अध्याय 11 तियानई संप्रदाय के 5 नायक गुंडे जो बलवान से डरते हैं और कमजोर को धमकाते हैं। मेरे रास्ते से हट जाओ। एक जोरदार धमाका हुआ और एक विशाल मुट्ठी उल्कापिंड की तरह नीचे गिर पड़ी। तुम्हें ही बाहर निकल जाना चाहिए, लिताई ने ठंडी चीख मारी और अपनी हथेली से वार किया। एक बहरा कर देने वाली गर्जना, जियो यूनिटिंग को टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह उड़ा दिया गया। एकमात्र दिव्य सागर क्षेत्र साधक यहां जंगली कार्य करने का साहस कर सकता है। वे वस्तुतः मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हैं। गधे, जियो यूनिटिंग को पीछे हटने पर बहुत गुस्सा आया। इतने सारे लोगों के सामने दिखावा करने में असफल होना वास्तव में शर्मनाक है। सौभाग्य से बहुत से लोग जियो यूनिटिंग को नहीं जानते थे और वे जानते थे कि वह यूनितियान पवित्र भूमि का एक साधारण शिष्य था। क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के कुछ शिष्य हंसने से खुद को नहीं रोक सके। ऐसा नहीं था कि वे शियाओ यूनिटिंग का मजाक उड़ा रहे थे, बल्कि उन्हें लगा कि वह व्यक्ति अपने आप को अधिक आंक रहा था। दिव्य सागर क्षेत्र के 9वें स्तर पर एक साधक स्वर्गीय एक संप्रदाय के 5 नायकों को चुनौती क्यों देगा? मैं क्लाउड हेवन पवित्र भूमि का शिष्य हूँ। ये देखकर कि बल काम नहीं करेगा, जियो यूनिटिंग ने सीधे क्लाउड हेवन पवित्र भूमि का नाम लिया और अपनी शक्ति से उन्हें डराने का इरादा किया। यूनितियन पवित्र भूमि प्रसिद्ध है और कई ताकतें इसके अनुयायियों को कुछ सम्मान देती हैं, ये जानते हुए कि उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। तो क्या हुआ अगर यह क्लाउड हेवन पवित्र भूमि है? मुझे नहीं पता कि मैंने क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के कितने शिष्यों को हराया है। यदि आप मेघ स्वर्ग पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र होते तो हम पीछे हट सकते थे, लेकिन एक साधारण शिष्य हमें डराने के लिए मेघ स्वर्ग पवित्र भूमि का उपयोग करने का साहस करता है। तियानई संप्रदाय के 5 नायकों ने बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिखाया। यद्यपि तियानई संप्रदाय यूनितियान पवित्र भूमि जितना शक्तिशाली नहीं है, फिर भी यह एक शीर्ष स्तरीय शक्ति है। ये भी एक अलिखित नियम है कि जब युवा पीढ़ी लड़ रही हो तो पुरानी पीढ़ी हस्तक्षेप नहीं करेगी। ऐसा करना अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करने का भी एक बेहतर तरीका है। हे, यदि हमारा पवित्र पुत्र यहाँ होता तो क्या तुम तब भी इतना अहंकारी होने का साहस करते? क्लाउड हेवन पवित्र भूमि से आए शिष्यों में से एक अब इसे सहन नहीं कर सका और बोल पड़ा, हे, अगर आपका पवित्र पुत्र भी यहाँ होता तो वह बहुत पहले ही अंदर चला गया होता। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह अभी भी बाहर होता, लिताई ने उदासीनता से कहा। तियानई संप्रदाय के 5 उत्कृष्ट शिष्य कमजोरों को धमकाने और बलवानों से डरने के लिए कुख्यात हैं। उन्होंने संप्रदाय में बाधा डालने का साहस केवल इसलिए किया क्योंकि वे जानते थे कि यूनितियान पवित्र भूमि के बाहर कोई उत्कृष्ट शिष्य नहीं है। इसके अलावा उन्होंने आगे बढ़ने का साहस तभी किया जब उन्होंने विभिन्न शक्तियों के चमत्कारिक योद्धाओं को पहले गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करते देखा। तियानई संप्रदाय के 5 नायक भी प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। इन लोगों को सीधे सीधे बता दीजिए कि ये गुंडे हैं जो कमजोरों का शिकार करते हैं और ताकतवरों से डरते हैं। अगर ये लोग संतुष्ट नहीं हैं तो वे आकर उनसे लड़ सकते हैं। बाहर फंसे लोग ये सुनकर क्रोधित हो गए, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे, विशेषकर जियो यूनिटिंग। जब भी वह बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र का नाम सुनता है तो वह चिढ़ जाता है। यूनितियान पवित्र पुत्र, ये फिर से यूनितियान पवित्र पुत्र है। यह आदमी हर जगह क्यों है? यह आदमी बस अपनी प्रतिभा और पृष्ठभूमि पर भरोसा कर रहा है। अगर उसके पास उस तरह की प्रतिभा और पृष्ठभूमि होती तो वह निश्चित रूप से फैंग चेन से कमजोर नहीं होता। हालांकि जियो यूनिटिंग केवल अपने दिल में ही यह सोच सकता था और इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि वह ये भी जानता था कि फैंग चेन वह व्यक्ति है जिसकी तुलना वह अभी नहीं कर सकता। समय बीतता गया और 2 घंटे बीत गए। क्योंकि तियानई संप्रदाय के 5 नायक रास्ता रोक रहे थे, कई युवा शिष्य प्रवेश करने में असमर्थ थे। ये देखते हुए कि अब समय आ गया है, लिताई और उनके 5 लोगों के समूह ने गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया और अन्य लोगों ने भी उनका अनुसरण किया। जियो यूनिटिंग को बहुत दुख हुआ और वह तियानी संप्रदाय के 5 नायकों के दमन के सामने असहाय थी। इसके अलावा गुप्त मार्ग काफी समय से खुला है और चूंकि वे अभी इसमें प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए उन्हें इसे प्राप्त करने के बहुत कम अवसर मिलेंगे। तियानई संप्रदाय के 5 नायक, मैं तुम्हें याद रखूंगा। जियो यूनिटिंग ने ठंडे मन से 5ों लोगों की पीठ देखी और उनके चेहरे याद कर लिए। दूसरी ओर तियानकिंग संप्रदाय का गुप्त क्षेत्र खुलने के बाद सभी लोग उसमें प्रवेश कर गए। अधिकांश लोग सीधे सबसे ऊंची चोटी पर चले गए, जो मुख्य चोटी भी है। लिन लोवे चुपचाप सबसे निचली चोटी पर चले गए। विशेष रूप से इसने हुआ मिंगइंग को नजरअंदाज कर दिया। हुआ मिंगइंग हमेशा से उसके खिलाफ रही है और अगर उसे पता चल गया तो वह निश्चित रूप से उसे रोक देगी। इससे हमें आकाश आधार तकनीक और यिन यांग दिव्य जल प्राप्त करने से रोका जा सकेगा। सबसे छोटी चोटी पर पहुंचकर लिन लोवे सीधे चोटी के पीछे गई, जहां उसने एक विशाल चट्टान पर खुदा हुआ एक धर्मग्रंथ देखा। ये धर्मग्रंथ ताओवादी आकर्षण से परिपूर्ण प्रकाश भी बिखेरते हैं। आकाश सहायक तकनीक। लिन लोवे की आंखें चमक उठी और वह पत्थर की दीवार के नीचे चट्टान पर पालथी मारकर बैठ गई और सभी शास्त्रों को ध्यान से पढ़ने लगी। बहुत सारे शास्त्र हैं और प्रत्येक शास्त्र अत्यंत गहन है। हालांकि लिन लोवेई को ये बहुत आसानी से याद था। आकाश आधार तकनीक याद करने के बाद लिन लोवेई ने अपनी हथेली से वार किया। एक तेज आवाज के साथ उसने पूरी शास्त्र शिला दीवार को काट डाला और उसे अपनी स्थानिक अंगूठी में रख लिया। आकाश आधार तकनीक प्राप्त करने के बाद अगला कदम यिन यांग दिव्य जल प्राप्त करना है। लिन लोवेई सीधे नीचे चली गई क्योंकि उसे नीचे एक गुफा मिली। वह सीधे गुफा में चली गई, एक संकरे रास्ते से होते हुए सबसे भीतरी भाग में पहुंची। सबसे भीतरी गुप्त कक्ष में एक अवरोध था जिसके भीतर काली और सफेद गैस थी। ये यिन यांग दिव्य जल है, ये गैस क्यों है? हालांकि लिन लोवेई ने जल्दी ही इसका पता लगा लिया क्योंकि ये गैसें पानी में बदल सकती थी। जैसी कि उम्मीद थी, लिन लोवेई ने अवरोध खोलने के बाद सीधे काले और सफेद ऊर्जा को नियंत्रित किया। अंततः ये गैसें संघनित हो गईं और पानी का एक धब्बा बन गया जो स्पष्ट रूप से काला और सफेद था। मूलतः पानी का कोई रंग नहीं था, लेकिन ये साधारण पानी नहीं था, ये यिन यांग दिव्य जल था। यदि कोई यिन यांग दिव्य जल को अवशोषित कर लेता है तो वह निश्चित रूप से एक यिन यांग दिव्य शरीर का निर्माण कर सकता है। लेकिन जब लिन लोवेई ने अपने सामने यिन यांग दिव्य जल देखा तो वह असमंजस में पड़ गई। वह इस यिन यांग दिव्य जल को कैसे स्वीकार कर सकती थी? यहाँ यिन यांग दिव्य जल को परिष्कृत करने का उनका कोई इरादा नहीं था। तभी एक चांदी जैसी हंसी गूंज उठी। हाँ हाँ, मुझे पता था बहन, आपका अनुसरण करना निश्चित रूप से सही निर्णय था। ये वास्तव में यिन यांग दिव्य जल है। ये सुनकर लिन लोवेई की अभिव्यक्ति जम गई। आवाज का मालिक कोई और नहीं बल्कि हुआ मेंगिंग था। फूल सपना छाया, लिन लोवेई ने अपने दांत पीस लिए। मुझे लगा कि मैंने इस महिला से दूरी बना ली है, लेकिन वह फिर भी मेरा पीछा करती रही। हुआ मेंगिंग ने लिन लोवेई के संदेह को समझते हुए मुस्कुराते हुए कहा, बहन मैंने देखा है कि आप मुझसे बचने की कोशिश कर रही हैं। आप ऐसा जानबूझकर कर रही हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि आपके पीछे आने से आपको कुछ न कुछ हासिल होगा। जैसा कि अपेक्षित था, हमें यिन यांग दिव्य जल प्राप्त हुआ जो कि वास्तव में हमारे चंद्र महल की सबसे अधिक इच्छा है। ये कहने के बाद हुआ मेंगिंग की आंखें इच्छा से जलने लगी। चंद्र महल यिन और यांग के महान दाओ की खेती करता है, इसलिए यिन यांग दिव्य जल स्वाभाविक रूप से उनके लिए सबसे उपयोगी चीज है। चंद्र महल की यिन यांग तकनीक में पूर्ण रूप से निपुणता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के पास यिन यांग दिव्य शरीर होना चाहिए। हजारों वर्षों से यिन यांग दिव्य शरीर वाला कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति चंद्र महल में प्रकट नहीं हुआ है। इसलिए कोई भी शिष्य परम यिन यांग तकनीक में पूर्णतः निपुणता प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। अच्छी बहन, ये यिन यांग दिव्य जल तुम्हारे लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, कृपया इसे मुझे दे दो, हुआ मेंगिंग ने धीरे से कहा। यह आवाज असीम आकर्षण से भरी थी जिसे सुनकर खून में उबाल आ जाता था। ऐसी मोहक तकनीकें पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए बिल्कुल अप्रतिरोध्य हैं। लिन लोवेई ने मंत्रमुग्ध करने वाली तकनीक को महसूस किया, उसे बलपूर्वक दबा दिया और ठंडे स्वर में कहा, वास्तविकता पर नहीं आशाओं के आधार पर कामना करना। वह यिन यांग दिव्य जल कैसे सौंप सकती थी? अध्याय 12 फैंग चेन। मैंने वास्तव में आपको गलत समझा। फैंग चेन के आंतरिक विचारों के अनुसार यिन यांग दिव्य जल ही उसकी शक्ति में वृद्धि की कुंजी है। अगर वह यिन यांग दिव्य जल को त्याग देती तो यह उसकी शक्ति के मार्ग में बाधा बन जाता। तो फिर लिन लोवेई इस बात से कैसे सहमत हो सकते हैं? चूंकि मेरी बहन इसे चाहती है, इसलिए मैं इसे उसे दे दूंगा, हुआ मिंगयिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। लिन लोवेई यह सुनकर दंग रह गया। यह महिला इतनी उदार कब हो गई? हालांकि मुझे आपको याद दिलाना होगा बहन, इस यिन यांग दिव्य जल को परिष्कृत करने के लिए एक पुरुष और एक महिला के मिलन की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति अकेले इसे पूरा नहीं कर सकता है। बहन, अगर तुम्हें बाहर कोई भी पुरुष मिल गया तो तुम अपना कौमार्य खो दोगी। अगर तुम्हारे पवित्र पुत्र को इस बारे में पता चला तो वह क्या सोचेगा, हुआ मिंगयिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वह जानती थी कि लिन लोवेई पवित्रता का एक हिमखंड था, अत्यंत अलग थलग। वह संयुक्त साधना के लिए किसी भी पुरुष को कैसे पकड़ सकती थी? इसके अलावा वह निश्चित थी कि लिन लोवेई यिन यांग दिव्य जल को स्वीकार करने में सक्षम नहीं था। यिन यांग दिव्य जल प्राप्त करने के लिए कुछ विधियों की आवश्यकता होती है। इन विधियों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और उससे भी कम लोग जानते हैं कि इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। केवल मून पैलेस ही इनमें सबसे अधिक कुशल है। इन शब्दों ने लिन लोवेई को सचमुच डरा दिया। यह विचार कि यिन यांग दिव्य जल को परिष्कृत करने के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों को एक साथ साधना करने की आवश्यकता है ने उसे पीछे हटने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा फैंग चेन को इस बारे में पता चलने के विचार से वह घबरा गई। स्पष्टतः वह ऐसा नहीं चाहती थी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए हुआ मिंगिंग ने एक जेड बोतल निकाली और हवा में अपना हाथ पटका, जिससे भिनभिनाने जैसी ध्वनि उत्पन्न हुई। यिन यांग दिव्य जल पर लिन लोवेई का नियंत्रण हुआ मिंगिंग द्वारा उलट दिया गया, जिसने फिर एक हाथ की मुहर बनाई और यिन यांग दिव्य जल को एक जेड बोतल में संग्रहित किया। चूंकि मेरी बड़ी बहन इसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं छोटी बहन उसके लिए ये करने को तैयार हूँ और इस यिन यांग दिव्य जल को स्वीकार करती हूँ। हुआ मिंगइंग ने चांदी जैसी हंसी निकाली। यिन यांग दिव्य जल स्वीकार करने के बाद वह तुरंत वहां से चला गया। वे शब्द केवल लिन लोवेई को डराने के लिए थे। चाहे कुछ भी हो, उसे यह यिन यांग दिव्य जल प्राप्त करना ही था, क्योंकि यह उसके लिए या चंद्र महल के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आप लिन लोवेई गुस्से में था और जब हुआ मिंगइंग गायब हो गई तो वह फटने ही वाला था। मैं पर्याप्त निर्णायक नहीं था, लिन लोवेई ने आह भरी। ऐसा नहीं था कि उसके पास यिन यांग दिव्य जल को स्वीकार करने के साधन नहीं थे, बस उसके पास ऐसा करने के लिए आत्मविश्वास की कमी थी। उसे यकीन नहीं था कि वह यिन यांग दिव्य जल को स्वीकार कर पाएगी या नहीं। इस समय हुआ मिंगइंग प्रकट हुई, जिससे लिन लोवेई को संकोच हुआ, जिससे हुआ मिंगइंग को अवसर मिला। कितनी दुख की बात है, यिन यांग दिव्य जल उस महिला द्वारा चुरा लिया गया, लिन लोवेई ने असहाय होकर आह भरी। फोंग चेन के आंतरिक विचारों के अनुसार ये यिन यांग दिव्य जल उसकी शक्ति में वृद्धि की कुंजी है। हालांकि इस महत्वपूर्ण बिंदु को समझा नहीं गया। ऐसा लगता है कि फेंग चेन के विचार सत्य थे। आकाश आधार तकनीक और यिन यांग दिव्य जल दोनों इस सबसे छोटी चोटी पर स्थित हैं। तो जो मैंने पहले सुना था वह सच था, फेंग चेन वास्तव में मेरा दुश्मन नहीं बल्कि मेरा रक्षक है। ये विचार लिन लोवेई के मन में उठे और उसकी भावनाएं बहुत जटिल थी। अपने उपकारकर्ता फोंग चेन के प्रति अपने पिछले रवैये के बारे में सोचकर उसे बहुत पछतावा हुआ। फेंग चेन ने उसे बचाया, लेकिन उसने दयालुता का बदला शत्रुता से चुकाया। फेंग चेन, मैंने सचमुच तुम्हें गलत समझा, लिन लोवेई कुछ हद तक निराश था। अपने उद्धारकर्ता के साथ शत्रु जैसा व्यवहार करना सचमुच विडंबनापूर्ण है। फेंग चेन सही थी, वह एक कृतघ्न व्यक्ति थी। ये सब सोचकर लिन लोवेई का दिल पछतावे और अपराध बोध से भर गया। मुझे नहीं पता कि फेंग चेन को ये बातें कैसे पता हैं, लेकिन अब ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। अब से मैं दया का बदला शत्रुता से नहीं चुका सकता, मुझे उन गलतियों की भरपाई करनी होगी जो मैंने पहले की थी, लिन लोवेई ने मन ही मन सोचा। इन चीजों का अनुभव करने के बाद लिन लोवेई की मनस्थिति बदल गई। उसका मन पूरी तरह से फेंग चेन पर केंद्रित था, जो हार मान रहा था। इस क्षण से वह अपनी पिछली गलतियों के लिए प्रायश्चित करेगी। क्योंकि फेंग चेन ने जिस कठिन परीक्षा की बात की थी वह अभी शुरू नहीं हुई थी, इसलिए उसके पास अभी भी सुधार करने का मौका था। यदि संभव हुआ तो मैं फोंग चेन की रक्षा के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले हमें एक महत्वपूर्ण बात पता करनी होगी, ज़ियाओ युनटिंग के पिता वास्तव में कौन है। लिन लोवेई ने अपनी मुठियां भींच ली, उसकी आंखें ठंडक से भर गईं। अब जब उसे अंततः पता चल गया है कि उसका असली दुश्मन कौन है, तो स्वाभाविक रूप से वह उदासीन नहीं रहेगी। दूसरी ओर त्यानई संप्रदाय के 5 नायकों को धिक्कार है, तुम्हें भविष्य में आज के अपमान का 100 गुना सामना करना पड़ेगा। अंततः गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ज़ियाओ युनटिंग के मन में त्यानई संप्रदाय के 5 नायकों के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई। आज दूसरी पार्टी ने उसकी नाक कटवा दी। सत्ता में आने के बाद वह इन 5ों से बदला जरूर लेगा। क्या तुमने यह नहीं पूछा था? ज़ियाओ युनटिंग के अपमान की बातें सुनकर एल्डर मिंग खुद को सोचने से रोक नहीं सके। यदि ज़ियाओ युनटिंग अधिक शांत होते और दिखावा करने पर जोर नहीं देते तो उनकी प्रतिष्ठा नहीं गिरती और आज वे इस मुसीबत में नहीं पड़ते। हालांकि अंडरवर्ल्ड का बूढ़ा आदमी ये शब्द नहीं कहेगा। पिछले कुछ दिनों में ज़ियाओ युनटिंग के साथ बहुत सी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटी हैं। अगर वह थोड़ी सी भी शिकायत करता तो शायद उसकी मानसिकता बहुत पहले ही बिगड़ चुकी होती और शायद वह उससे नफरत भी करने लगता। भविष्य में अपने भौतिक शरीर को पुनः आकार देने के लिए एल्डर मिंग ने इसे सहन किया। हालांकि ज़ियाओ युनटिंग का दुर्भाग्य यहीं समाप्त नहीं हुआ। गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के कुछ समय बाद ही लिन लोवेई उसके पास आई। वरिष्ठ बहन लिन, लिन लोवेई को आते देख ज़ियाओ युनटिंग आखिरकार थोड़ा मुस्कुराया। जैसा कि उम्मीद थी, मेरी बड़ी बहन अब भी मुझसे प्यार करती है। वह ऐसा सिर्फ इसलिए करती थी क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे। अब जब हम गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं तो हर कोई अवसरों की तलाश में है, इसलिए स्वाभाविक रूप से सीनियर सिस्टर को उतनी चिंताएं नहीं हैं। ये सोचकर ज़ियाओ युनटिंग की मुस्कान और गहरी हो गई। जब एल्डर मिंग ने लिन लोवेई को आते देखा तो उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। इस महिला में जानलेवा इरादे दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वह ज़ियाओ युनटिंग को मारना चाहती है, बूढ़े आदमी मिंग ने मन ही मन सोचा। अगले ही पल लिन लोवेई ने अपने हाथ में एक लंबी तलवार पकड़ी और उसे ज़ियाओ युनटिंग की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे बताओ तुम्हारे पिता कौन है और वह अब कहाँ है? वरिष्ठ बहन लिन, ज़ियाओ युनटिंग वहीं स्तब्ध खड़ा रहा। ये पूरी तरह से अप्रत्याशित था। लिन लोवेई मुझे पसंद करती है तो वह मुझ पर तलवार क्यों तान रही है? तलवार की नोक को अपने इतने करीब देखकर ज़ियाओ युनटिंग को पता था कि अगर उसने ठीक से जवाब नहीं दिया तो लिन लोवेई वास्तव में उसे मार डालेगा। हालांकि ये बात ज़ियाओ युनटिंग को हैरान कर गई। ऐसा क्यों हो रहा था? उसने लिन लुओवेई को नाराज नहीं किया, वास्तव में उसने उसकी मदद की। यद्यपि यह सहायता बेकार है, फिर भी यह सहायक हो सकती है। मेरे प्रश्न का शीघ्र उत्तर दो, लिन लुओवेई ने अधीरता से कहा। फैंग चेन की सच्ची भावनाओं की पुष्टि करने के बाद लिन लुओवेई ने जियो युनटिंग के प्रति जानलेवा इरादा विकसित किया। बाकी सब बातों को एक तरफ रखते हुए फैंग चेन के आंतरिक विचारों से यह पता चलता है कि इस आदमी ने उसे बचाने की योजना बनाई, फिर बाद में फैंग चेन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और यिन यांग दिव्य जल का मामला भी है। ये सब दर्शाता है कि जियो युनटिंग एक चालाक और निर्दयी व्यक्ति है। एक भयानक हत्या का इरादा उस पर हावी हो गया और जियो युनटिंग तुरंत घबरा गया। जल्दी से कहा, मैं भी नहीं जानता कि मेरे पिता कौन हैं। मैं अपने पिता से कभी नहीं मिला। जब मैं बच्चा था तब उन्होंने मुझे और मेरी माँ को छोड़ दिया था। जब जियाओ युनटिंग ने अपने पिता के बारे में बात की, जिनसे वह कभी नहीं मिला था, तो उसकी आवाज़ ठंडी हो गई। वह अपने पिता से कभी नहीं मिला था, न ही वह जानता था कि उसके पिता कौन थे। उसके मन में अपने पिता के प्रति गहरी नाराजगी थी। क्या? लिन लुओवेई ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई। जियो युनटिंग की उपस्थिति को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि वह नकली है। उन्होंने मूल रूप से यह जानने की आशा की थी कि जियाओ युनटिंग के पिता कौन थे, लेकिन ऐसा लगता है कि यह काम नहीं करेगा। वरिष्ठ बहन लिन, क्या आप मेरे पिता को जानती हैं? ऐसा लग रहा था कि जियो युनटिंग ने कुछ सोचा है और लिन लुओवेई को गौर से देखा। अध्याय 13, अमर स्तर की गुप्त तकनीक, महान दाओ डोमेन तकनीक। यदि लिन लुओवेई अपने पिता को नहीं जानती थी तो वह पूछने क्यों आई? मैं उसे नहीं जानता, लिन लुओवेई ने कहा। अगर वह जानती थी कि जियाओ युनटिंग के पिता कौन हैं, तो वह उनसे पूछने क्यों आई? असंभव, बिल्कुल असंभव। अगर आप मेरे पिता को नहीं जानते तो उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? जियो युनटिंग ने जल्दी से कहा, वरिष्ठ बहन लिन, मुझे बताओ वास्तव में मेरे पिता कौन हैं। जरूरी नहीं कि वह अपने पिता के प्रति नाराजगी रखता हो, यही कारण है कि वह ये जानने के लिए इतना उत्सुक है कि उसके पिता कौन हैं। मुझे पता नहीं है, लिन लुओवेई ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। ऐसा लगता है कि केवल फैंग चेन ही जानता है कि जियो युनटिंग के पिता कौन हैं। यद्यपि जांच की जा सकती है, लेकिन इसमें समय लगेगा और यह पता लगाना संभव नहीं होगा कि शियाओ युनटिंग के पिता कौन हैं। चूंकि स्वयं जियाओ युनटिंग को भी यह बात पता नहीं थी, इसलिए उन्होंने वर्षों तक इसकी जांच की होगी। ऐसा लगता है कि जियो युनटिंग के पिता कौन हैं, ये जानने का एकमात्र तरीका फैंग चेन के माध्यम से है। लेकिन हम फैंग चेन से कैसे पूछें? अगर हम सीधे पूछें तो क्या इससे सच्चाई उजागर नहीं हो जाएगी और क्या फैंग चेन का संदेह नहीं जागेगा? लिन लुओवेई झिझके। वह फैंग चेन के विचारों को सुन सकती थी, लेकिन अभी इस क्षमता को प्रकट नहीं करना चाहती थी। जैसे ही लिन लुओवेई झिझकी, जियो युनटिंग चला गया। लिन लुओवेई ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। असल में वह जियाओ युनटिंग से यह जानना चाहती थी कि दूसरे पक्ष का पिता कौन है। हालांकि जियाओ युनटिंग को भी यह नहीं पता था, इसलिए उसे अपने पास रखने का कोई मतलब नहीं था। हम उसे गुप्त क्षेत्र में नहीं मार सकते। बिना किसी कारण के अपने ही शिष्यों को मारना अनुचित है। दर्जनों मील दूर जियो युनटिंग ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, चारों ओर ऐसे देखा जैसे उसे डर हो कि लिन लुओवेई अचानक प्रकट हो जाएगा। उसे लिन लुओवेई की जानलेवा मंशा का अंदाजा हो गया था। अगर वह वहां और रुका तो लिन लुओवेई कोई कदम उठा सकता था। अपनी मौजूदा ताकत के साथ उसके लिए लिन लुओवेई को हराना मुश्किल होगा। सुरक्षित रहने के लिए जियो युनटिंग ने जल्दी से भागने के लिए अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया। मास्टर, लिन लुओवेई मुझे क्यों मारना चाहता है? जियो युनटिंग ने नाराजगी से कहा। उसे लिन लुओवेई से कोई शिकायत नहीं थी, तो वह उसे क्यों मारना चाहती थी? इसके अलावा उन्हें लिन लुओवेई का उपकारक भी माना जाता था। ये संभवतः आपके पिता से संबंधित है, एल्डर मिंग ने कहा। हालांकि हाल ही में जियो युनटिंग ने उसे निराश किया था, फिर भी वह उसकी एकमात्र आशा थी और एल्डर मिंग अभी भी नहीं चाहते थे कि उसके साथ कुछ भी घटित हो। अतः अंडरवर्ल्ड के बूढ़े आदमी ने उसे निष्कर्ष निकालने में मदद की। मैंने अभी उसे यह कहते सुना कि वह मेरे पिता को नहीं पहचानती, जियाओ युनटिंग ने हैरान होकर पूछा, और अगर उसे मेरे पिता से कोई शिकायत है भी तो वह मुझे ढूंढने क्यों आ रही है? उसका अपने पिता से कोई संबंध नहीं है। अगर उसे तुम्हारे पिता से कोई दुश्मनी है तो तुम उस दुश्मन के बेटे हो, और तो और उसे तुम्हारे रिश्ते के बारे में भी नहीं पता, तो वो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कैसे कर सकती है? अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या तुम उसके साथ सामान्य व्यवहार कर पाते? एल्डर मिंग ने कुछ लाचारी से कहा। ये सुनकर जियो युनटिंग चुप हो गया। यदि वह होता तो संभवतः वह दूसरे व्यक्ति को मौके पर ही मार डालता। अभी तुम्हारा युनटिन पवित्र भूमि वापस जाना संभव नहीं है। लिन लुओवेई शायद कुछ समय तक तुम पर नजर रखेगी। तुम्हें अभी बाहर रहकर प्रशिक्षण लेना चाहिए। जब पवित्र भूमि प्रतियोगिता शुरू होगी तब तुम वापस जा सकते हो। जब तक आप पवित्र भूमि ग्रैंड प्रतियोगिता के दौरान चमकते रहेंगे और एक सच्चे शिष्य बनेंगे, तब तक लिन लुओवेई भी आपके साथ कुछ नहीं कर पाएगा। सच्चे शिष्य पवित्र भूमि की मूल शक्ति और भविष्य की आशा हैं। यहां तक कि पवित्र पुत्र भी उनके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा सकते। अंडरवर्ल्ड के बूढ़े आदमी ने जियो यूनटिंग के लिए एक योजना बनाई। ठीक है, मैं मास्टर के निर्देशों का पालन करूंगा। हालांकि जियाओ युमतिंग घमंडी था, लेकिन वह ये भी समझता था कि मौजूदा हालात में युमतियन पवित्र भूमि पर लौटना नासमझी होगी। अगर लिन लोवेई उसे निशाना बनाएगा तो वह खतरे में पड़ जाएगा। लिन लोवेई को क्लाउड हेवन पवित्र भूमि में एक अत्यंत उच्च स्थान प्राप्त है। हालांकि यदि कोई पवित्र भूमि में भव्य प्रतियोगिता के दौरान चमक सकता है और अपना नाम बना सकता है तो वह एक सच्चा शिष्य बन सकता है। तब वे लिन लोवेई से इतने सावधान नहीं होंगे। मैं जियाओ युमतिंग इस अपमान को याद रखूंगा। जब मैं अपनी साधना में सफलता प्राप्त करूंगा तो मैं इसका 100 गुना बदला चुकाऊंगा, जियो युनटिंग ने मन ही मन सोचा। जो कुछ हुआ उसके बाद, मूल कहानी के पुरुष और महिला पात्र आधिकारिक रूप से अलग हो गए और दुश्मन बन गए। बादलों और स्वर्ग की पवित्र भूमि, पवित्र आत्मा का शिखर। डिंग, बधाई हो मेजबान, आपने अपने प्रयासों को सफलतापूर्वक त्याग दिया है और महान दाव की सर्वोच्च स्थिति प्राप्त कर ली है। सिस्टम से एक यांत्रिक अधिसूचना ध्वनि फैंग चेन के दिमाग में गूंज उठी। अंततः मैं पुनः हार मानने में सफल रहा और सिस्टम से पुरस्कार प्राप्त किया। फैंग चेन ने राहत की सांस ली। इतने दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार उसे सिस्टम से इनाम मिल गया। ये संभव है कि उसने तियानकिंग संप्रदाय गुप्त क्षेत्र की कहानी को नजरअंदाज कर दिया, जिससे उसे सिस्टम पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगले ही क्षण ऊर्जा का एक विशाल प्रवाह उसके शरीर में प्रवेश कर गया और अनगिनत दिव्य रून फैंग चेन के शरीर के चारों ओर घूमने लगे तथा धीरे धीरे उसमें प्रवाहित होने लगे, जिससे अंततः जियोटिंग का पूरा कंकाल मजबूत हो गया। प्रत्येक दिव्य रून में महान दाव की आभा होती है, जो अमर मंत्रोच्चार की तरह होती है, जिससे लोगों को ताजगी और उत्कृष्टता का एहसास होता है। दिव्य रून लगातार दिव्य शक्ति उत्सर्जित करते थे, जो उनकी मध्याह्न रेखाओं के साथ प्रवाहित होती हुई अंततः उनके डेंटियन में पहुंचती थी तथा असीम दिव्य शक्ति में परिवर्तित हो जाती थी। डेंटियन से एक जोरदार आवाज आई। ये संसार के सृजन जैसा था, जिसमें असीम दिव्य शक्ति बाहर की ओर फैल रही थी और यहां तक कि बाहरी दुनिया को भी प्रभावित कर रही थी। एक अवर्णनीय दिव्य प्रकाश अतुलनीय रूप से पवित्र फोंग चेन के शरीर के चारों ओर व्याप्त हो गया और लंबे समय तक बना रहा। ज्ञानोदय क्षेत्र का 8वां स्तर। ये स्पष्ट नहीं है कि यह सब बंद होने में कितना समय लगा। फैंग चेन ने यह उम्मीद नहीं की थी कि महान दाव की सर्वोच्च हड्डी से प्रतिक्रिया इतनी शक्तिशाली होगी। तियानकिंग संप्रदाय के गुप्त क्षेत्र के खुलने से पहले वह केवल ज्ञानोदय क्षेत्र के दूसरे स्तर पर था। निष्क्रियता की इस अवधि के दौरान उनकी साधना का स्तर तेजी से सुधर गया और वे ज्ञानोदय क्षेत्र के 4थे स्तर तक पहुंच गए। अब जबकि उसने सफलतापूर्वक अपने पिछले जीवन को त्याग दिया है और महान ताओ की सर्वोच्च अस्थि प्राप्त कर ली है, उसकी मूल अस्थियों को पुनः आकार देने की प्रक्रिया के दौरान उसका साधना स्तर सीधे 4 स्तरों से बढ़ गया है तथा वह ज्ञानोदय क्षेत्र के 8वें स्तर पर पहुंच गया है। इस बार मैंने 4 छोटे दायरे पार कर लिए हैं। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि 7वें क्षेत्र ज्ञानोदय क्षेत्र तक पहुंचने के बाद प्रत्येक अगले स्तर पर आगे बढ़ना बेहद कठिन है। फोंग चेन ने यह आशा नहीं की थी कि उसकी साधना इतनी आसानी से सुधर जाएगी। उसकी साधना की गति अकल्पनीय थी। इनमें एक गुप्त तकनीक भी है। फैंग चेन ने इस पर ध्यानपूर्वक विचार किया। महान दाव डोमेन कानून, ये सर्वोच्च दाव की हड्डियों में दर्ज एक शीर्ष स्तरीय गुप्त तकनीक है। ये गुप्त तकनीक वास्तव में सम्राट स्तर से भी आगे है और यहां तक कि अमर स्तर पर भी है। एक बार जब महान दाव डोमेन तकनीक सक्रिय हो जाती है तो हजारों मील तक फैला क्षेत्र फैंग चेन का डोमेन बन जाएगा और उस डोमेन के भीतर की हर चीज उसके नियंत्रण में होगी। समय, स्थान और उस क्षेत्र के भीतर की हर चीज फैंग चेन के नियंत्रण में है। फैंग चेन इस क्षेत्र का स्वामी था, जो सब कुछ नियंत्रित करता था। ये कहना होगा कि अमर स्तर की गुप्त तकनीकें वास्तव में शक्तिशाली हैं। बुरा नहीं, बुरा नहीं। फैंग चेन इस प्रणाली की सराहना करने से खुद को रोक नहीं सके। यह महान दाव डोमेन तकनीक अत्यंत शक्तिशाली है। एक बार इसे लागू करने पर व्यक्ति डोमेन का स्वामी, एक सच्चा भगवान बन जाता है। इस तरह मैं उसी स्तर पर अजय और व्यवहारिक रूप से अपराजय हो जाऊंगा। वह उच्च स्तर के विशेषज्ञों से भी आसानी से निपट सकता है, जब तक कि ताकत में अंतर बहुत अधिक न हो, अन्यथा फैंग चेन उन्हें इच्छानुसार कुचल सकता है। यद्यपि वह ज्ञानोदय क्षेत्र के केवल 8वें स्तर पर था, फिर भी रिटर्निंग वॉर्ड क्षेत्र का कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। शांत रहना वास्तव में अच्छा है, यह आपको आराम से अपने साधना स्तर को सुधारने की अनुमति देता है। फोंग चेन को खुशी का एहसास हुआ। यिन यांग दिव्य जल पूरी तरह से बेकार है। यदि किसी के पास जन्मजात स्वर्गीय यांग दिव्य शरीर भी हो तो क्या हुआ? क्या यह मेरे जन्मजात दाव शरीर से भी कमतर नहीं है? क्या इसकी तुलना सर्वोच्च दाव की अस्थि सुगंध से की जा सकती है? मेरा पूरा ढांचा पूरी तरह से नया हो गया है, जिससे मैं भविष्य में और भी अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच सकूंगा। साथ ही उन्होंने अमरस्तर की गुप्त तकनीक महान दाओ डोमेन तकनीक भी प्राप्त की। अध्याय 14 दिव्य पत्थर मंडप अपशिष्ट पत्थर पूर्वज। त्यानशुवान विश्व में समय की अनंत नदी में दिव्य स्तरीय गुप्त तकनीक के प्रकट होने की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। यहां तक कि यूनतियान पवित्र भूमि में भी ऐसी कोई गुप्त तकनीक नहीं है। महान दाओ की यह सर्वोच्च अस्थि उच्च श्रेणी की है, इसे शीर्ष श्रेणी की सर्वोच्च अस्थि भी माना जाता है। सुप्रीम बोन भी एक शीर्ष स्तरीय शारीरिक संरचना है और उसकी जन्मजात दाओ बॉडी के साथ इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली शारीरिक संरचनाओं में से एक माना जाता है। ऐसी शारीरिक बनावट वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति अलौकिक शक्तियों के साथ पैदा होता है। ये शक्तियां उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त होती हैं और बेहद शक्तिशाली होती हैं, किसी सम्राट स्तर की गुप्त तकनीक से कम नहीं। यही कारण है कि सुप्रीम बोन को दुनिया में सबसे शक्तिशाली शरीरों में से एक माना जाता है। हालांकि महान दाओ की सर्वोच्च अस्थि सर्वोच्च अस्थियों में सबसे उच्च स्तरीय है और इसकी तुलना साधारण सर्वोच्च अस्थियों से नहीं की जा सकती। ये सचमुच दुख की बात है, हमें अगले एपिसोड के लिए 2 या 3 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा इस कहानी का प्रभाव तियानकिंग संप्रदाय गुप्त क्षेत्र जितना महान नहीं है और प्राप्त पुरस्कार भी उतने महान नहीं हो सकते हैं, फैंग चेन ने अफसोस के साथ सोचा। तियानकिंग संप्रदाय के गुप्त क्षेत्र के बाद पवित्र भूमि ग्रैंड प्रतियोगिता होगी। पवित्र भूमि महाप्रतियोगिता कहानी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ज़ियाओ युनटिंग इस प्रतियोगिता के दौरान चमकेगा, सभी आंतरिक शिष्यों को कुचल देगा और खुद को क्लाउड हेवन पवित्र भूमि में मजबूती से स्थापित करेगा। इस पवित्र भूमि प्रतियोगिता ने कई लोगों को यह विश्वास दिला दिया कि ज़ियाओ युनटिंग फोन चेन से कम सक्षम नहीं था, जिसके कारण फोन चेन की पवित्र पुत्र के रूप में स्थिति पर धीरे धीरे सवाल उठने लगे। इस प्रतियोगिता के माध्यम से ज़ियाओ युनटिंग को पूर्वी दिव्य क्षेत्र में शीर्ष प्रतिभाओं में से एक के रूप में भी सम्मानित किया गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या ज़ियाओ युनटिंग आगामी पवित्र भूमि प्रतियोगिता में अपना नाम बना पाएंगे। लेकिन अगर मैं प्रसिद्ध भी हो जाऊं, तो भी इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं होगा। अगर वह सचमुच बाहर कूदना चाहता है तो उसे होश में लाने के लिए मैं उसे जमीन पर पटकने से भी नहीं हिचकिचाऊंगा। मूल कहानी की तुलना में फोंग चेन अब कहीं अधिक शक्तिशाली है। भले ही ज़ियाओ युनटिंग अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली है, लेकिन वह उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है, एक चींटी की तरह। इसके अलावा जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, ज़ियाओ युनटिंग और फोंग चेन के बीच की दूरी बढ़ती गई और अंततः ज़ियाओ युनटिंग केवल पीछे से ही उसे देख पा रहा था। इसके अलावा फोंग चेन के हार मान लेने के बाद ज़ियाओ युनटिंग ने शुरुआती दौर में अपने कौशल को निखारने के कई अवसर खो दिए, जिसके परिणाम स्वरूप बाद में उसकी ताकत उसका साथ देने में असमर्थ हो गई, जिससे उसके लिए मूल कथानक का पालन करना असंभव हो गया। शक्ति के बिना स्वर्गीय स्तंभ संप्रदाय का गुप्त क्षेत्र पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान नहीं कर सकता है, नहीं ये किसी की शक्ति में उल्लेखनीय सुधार करने के लिए संगत अवसर प्रदान कर सकता है। इसका मतलब ये भी है कि 3 महीने बाद पवित्र भूमि ग्रैंड प्रतियोगिता में ज़ियाओ युनटिंग के लिए मूल कहानी की तरह चमकना मुश्किल होगा। स्वाभाविक रूप से वह प्रसिद्ध नहीं हो सके। वास्तव में ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। इस सब का मुझसे क्या संबंध है, मैं सुस्ती जारी रखूंगा, फोंग चेन ने शांति से कहा। कहावत है, थोड़ी देर के लिए आराम करना मजेदार है और आराम करते रहना उससे भी अधिक मजेदार है। भले ही ज़ियाओ युनटिंग को अधिक अवसर मिले, लेकिन भविष्य में उनके लिए फैंग चेन से आगे निकलना मुश्किल होगा। जब तक कि भाग्य का कोई असाधारण प्रभाव न हो, जैसे कि भाग्य को चुनौती देना, उसके पास पहले से ही रिंग ग्रैंडपा जैसा अविश्वसनीय चीट कोड है, तो वह अन्य किस अविश्वसनीय अवसर की उम्मीद कर सकता है। हम इतने लंबे समय से होली स्पिरिट पीक पर हैं, अब समय आ गया है कि हम बाहर जाएं और कुछ ताजी हवा लें। फैंग चेन खड़ा हुआ, अपना शरीर तानकर अपने आप से बुदबुदाया। त्यानिक्सुआन विश्व में स्थानांतरित होने के बाद से मैं पवित्र आत्मा शिखर पर ही रहा हूं और अन्वेषण के लिए बाहर नहीं गया हूं। चूंकि हम इस दुनिया में आए हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें इसके शानदार परिदृश्यों को देखना चाहिए और इसके अनूठे रीति रिवाजों और संस्कृति का अनुभव करना चाहिए। इसलिए फैंग चेन का पवित्र आत्मा शिखर पर और अधिक समय तक रुकने और आराम करने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार कहानी का अगला भाग अगले 3 महीनों तक शुरू नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए फोंग चेन ने टहलने जाने का फैसला किया। तियानलान राज्य, ये स्थान पूर्वी दिव्य क्षेत्र और दक्षिणी डायन क्षेत्र के मिलन बिंदु पर स्थित है, जो इसे एक बहुत ही विशेष क्षेत्र बनाता है। आप यहाँ विभिन्न जातियों के लोगों से मिल सकते हैं, क्योंकि यह एक दूरस्थ क्षेत्र है। तियानलान प्रांत बहुत अराजक है और अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती हैं। बहुत कम लोग पर्याप्त शक्ति के बिना यहाँ आने का साहस कर पाएंगे। वानलिंग शहर तियानलान प्रांत का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर जैद जुए के लिए प्रसिद्ध है और तियानिक्सुआन दुनिया में भी इसकी एक छोटी प्रतिष्ठा है। यदि आप पत्थरों पर जुआ खेलने में रुचि रखते हैं, तो यह आपके लिए उपयुक्त स्थान है। जब फैंग चेन मूल उपन्यास पढ़ रहे थे, तो वे हमेशा वानलिंग शहर में जैद जुए के बारे में बहुत उत्सुक रहते थे। चूंकि मैं यहां आ चुका हूं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे यहां आकर इसे देखना होगा। जेड पर जुआ खेलने का रोमांच इस तथ्य में निहित है कि इसकी एक कतरनी आपको रातों रात अमीर बना सकती है, या यह आपको दिवालिया भी बना सकती है। फैंग चेन भी इसे आजमाना चाहता था। वानलिंग शहर की सड़कें गतिविधि से भरी हुई थी, विभिन्न जातियों के लोग घूम रहे थे, यहां तक कि राक्षस जाति के कुछ सदस्य भी हर जगह देखे जा सकते हैं। फैंग चेन ने अपनी उपस्थिति छुपाए और सड़क पर चलते हुए आसपास के दृश्यों को बड़ी जिज्ञासा से देखा। वह इस दुनिया में एक महीने से है और वह पूरे समय पवित्र आत्मा के शिखर पर रहा है। एक अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है, उतने समय तक घूमने के बाद फैंग चेन एक शानदार इमारत के सामने पहुंचा। दिव्य पत्थर मंडप। ये तीन बड़े अक्षर प्रवेश द्वार पर एक विशाल चट्टान पर उकेरे गए हैं, जिनमें ताओवादी आकर्षण के निशान हैं, जो ये संकेत देते हैं कि इन्हें किसी शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा उकेरा गया था। फैंग चेन अंदर गया और उसका स्वागत एक विशाल चौकोर स्थान पर हुआ, जिस पर अनेक दिव्य पत्थर रखे हुए थे। ये सभी दिव्य पत्थर एक ऐसी शक्ति से बंधे हैं जिसे दिव्य इंद्रियां भेद नहीं सकती। यदि पत्थर को भेदा जा सके तो पत्थरों पर जुआ खेलने का मजा ही खत्म हो जाएगा। ये दिव्य पत्थर उत्कृष्ट है, मुझे लगता है कि इससे दिव्य सोना निकल सकता है। दिव्य धातु का क्या उपयोग है? ये तो बस एक बेकार चट्टान है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा फैसला कभी गलत नहीं हुआ। मैं सैकड़ों सालों से वानलिंग शहर में पत्थरों का अवलोकन कर रहा हूं और कभी कोई गलती नहीं की। नहीं नहीं नहीं, कृपया ऐसा मत कहिए। मैं आपका नाम जानता हूँ, ओल्ड एंसेस्टर वेस्ट स्टोन। दिव्य चेतना के 10 में से 9 टुकड़ों में ये होता है, लेकिन आप उस टुकड़े को चुनने पर अड़े रहते हैं जिसमें यह नहीं है। हाहा, पुराने पूर्वज वेस्ट स्टोन, तुम यहाँ फिर से क्या कर रहे हो? लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। उनके आसपास मौजूद लोगों में हंसी की लहर दौड़ गई। भूरे रंग का लबादा पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसका चेहरा लाल था, अपने आसपास के लोगों की बातों का खंडन करता रहा। तुम्हें क्या पता? ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं उन दिव्य पत्थरों को चुनने से घृणा करता हूँ। उन दिव्य पत्थरों में कुछ भी नहीं है। पुराने पूर्वज अपशिष्ट पत्थर, मैं शर्त लगाता हूँ कि इनमें से कोई भी दिव्य पत्थर आपके जितना जिद्दी नहीं है। सब हंस पड़े। पुराने मास्टर अपशिष्ट पत्थर, वह वानलिंग शहर में एक बेहद प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। सदियों से उन्होंने अनगिनत दिव्य पत्थर खरीदे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही अच्छे रत्न प्राप्त कर पाए हैं। उनकी सबसे शानदार उपलब्धि ये थी कि 10 दिव्य पत्थरों में से 9 में खजाने थे, फिर भी उन्होंने एक बेकार पत्थर को चुना। अंत में उन्होंने यहां तक कह दिया कि खजाने से भरे दिव्य पत्थर को चुनने में क्या खास बात है, असली हुनर तो उस बेकार पत्थर को चुनने में है। ये पुराने पूर्वज फेशे नाम की उत्पत्ति है और उन्हें पुराने पूर्वज जिद्दी मुंह के रूप में भी जाना जाता है। फैंग चेन वहां आया और उत्साह देखने के लिए एक तरफ खड़ा हो गया। वह बेकार पत्थर के इस पुराने पूर्वज से अच्छी तरह वाकिफ था। मूल उपन्यास में इस ओल्ड मास्टर फेशे की पहचान अत्यंत रहस्यमय है और उपन्यास के अंत तक इसका खुलासा नहीं होता है। उस समय कई पाठकों ने अनुमान लगाया कि यह फेशे पूर्वज कोई छिपा हुआ पुराना राक्षस हो सकता है, अन्यथा उसके बारे में इतने सारे विवरण नहीं होते। हालांकि इस ओल्ड मास्टर फेशे की पहचान उपन्यास के अंत तक कभी उजागर नहीं की गई थी। फैंग चेन ने सोचा कि इस पुराने पूर्वज फेशे की कोई वास्तविक पहचान नहीं हो सकती है, यदि होती भी तो ये बहुत पहले ही उजागर हो चुकी होती। बेशक ये लेखक का भ्रम भी हो सकता है, उन्होंने कथानक में बहुत अधिक छेद कर दिए हैं और उन्हें नहीं पता कि उन्हें कैसे भरा जाए। चांदनी महल की पवित्र युवती हुआ मेंगिंग आ गई है और स्नो कबीले की प्रतिभाशाली जू युनशियाओ भी आ गई है। मैंने सुना है कि स्नो क्लान की मून पैलेस के साथ साझेदारी है। इन दोनों विलक्षण प्रतिभाओं के साथ ऐसा लगता है कि ये अफवाहें सच हैं। अध्याय 15, चांदनी महल की पवित्र युवती हुआ मेंगिंग। चर्चा तुरंत रुक गई और सबने दरवाजे की ओर देखा। हुआ मेंगिंग और जू युनशियाओ, जू कबीले की प्रतिभाशाली, दोनों ही युवा पीढ़ी के उत्कृष्ट सदस्य थे। वे तियानिक्सुआन विश्व में सबसे प्रसिद्ध प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और उनकी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में जानी जाती है। हुआ मेंगिंग विशेष रूप से अद्वितीय सुंदरता की धनी है। केवल कुछ ही महिलाएं हैं जिनकी सुंदरता की तुलना उनके साथ की जा सकती है, जो स्वाभाविक रूप से अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं। जहां तक स्नो कबीले के प्रतिभाशाली व्यक्ति जू युनशियाओ की बात है, वह भी कम उत्कृष्ट नहीं है। वह स्नो कबीले के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक हैं, पवित्र पुत्र के बाद दूसरे स्थान पर। दिव्य पाषाण मंडप के प्रवेश द्वार पर दो विलक्षण प्रतिभाएं धीरे धीरे अंदर आईं। वे एक आदर्श जोड़ी थे, एक ऐसा जोड़ा जिससे हर कोई ईर्ष्या करता था। जू युनशियाओ राजसी और प्रभावशाली है तथा उसका आचरण असाधारण है। हुआ मेंगिंग अपनी लहराती सफेद पोशाक में किसी दिव्य प्राणी की तरह अलौकिक और अलौकिक लग रही थी। साथ ही वह एक आकर्षक आकर्षण बिखेरती है जिससे उसकी हर हरकत से लोगों का खून खौल उठता है। दोनों एक आदर्श जोड़े की तरह लग रहे थे। हालांकि करीब से निरीक्षण करने पर हुआ मेंगिंग की आंखों में अधीरता देखी जा सकती थी। ये वास्तव में हुआमेंगिंग है। फैंग चेन ने नायिका हुआमेंगिंग को देखा, जो मूल कृति में बहुत चमकीली थी और उसका चरित्र भी बहुत दिलचस्प था। यद्यपि हुआमेंगिंग चंद्रमहल की पवित्र युवती है, लेकिन चंद्रमहल के अन्य साधकों के विपरीत, जो स्वच्छंद हैं, हुआमेंगिंग एक अत्यंत स्नेही महिला है, जिसका कभी कोई रोमांटिक संबंध नहीं रहा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हुआमेंगिंग को शुरू में फैंग चेन पसंद था, लेकिन उसने उसे छोड़ दिया क्योंकि पुस्तक में फैंग चेन पूरी तरह से लिन लोवेई का पीछा कर रहा था और उसके प्रति बेहद समर्पित था। लिन लोवेई और हुआमेंगिंग के बीच अनबन थी। फैंग चेन ने कई बार हुआमेंगिंग की मदद की, लेकिन हर बार वह लगभग उसे मार ही डालता था, जिससे हुआमेंगिंग निराश हो जाती थी और फैंग चेन से पूरी तरह हार मान लेती थी। अंततः मुख्य नायिका शियाओ युनटिंग ने अवसर का लाभ उठाया और वह मुख्य नायिकाओं में से एक बन गई। सारा आकर्षण व्यर्थ। उसे चांदनी महल में नहीं होना चाहिए था, उसे बदनाम नहीं करना चाहिए था। चंद्र महल की पवित्र युवती के रूप में कभी भी यौन संबंध नहीं बनाना, क्या यह अपमान नहीं है? फैंग चेन ने मन ही मन सोचा। मेरा अनुमान है कि इस फूल स्वप्न छाया का मुख्य विषय विरोधाभास है। चंद्र महल संप्रदाय में व्यक्ति को कामुक होना चाहिए और इस पहलू में अंतहीन रूप से लिप्त रहना चाहिए, लेकिन वह चंद्र महल में ताजी हवा के झोंके की तरह थी, जो कीचड़ से ऊपर उठकर बेदाग थी। क्या? फैंग चेन के आंतरिक विचार। हुआमेंगिंग अचंभित रह गई, उसका दिल उथल पुथल से भर गया। भले ही उसका फैंग चेन के साथ ज्यादा संपर्क नहीं था, फिर भी हुआमेंगिंग उसकी आवाज से बेहद परिचित थी। क्या फैंग चेन यहाँ है? हुआमेंगिंग बहुत खुश हुई, फिर उसने दांत पीसते हुए खुद से कहा, मेरे आकर्षक शरीर का ये क्या दुरुपयोग है? चंद्रमा देवी की शर्म का बदला चुकाओ। इसके अलावा इस आदमी को कैसे पता कि उसने अभी तक किसी महिला के साथ यौन संबंध नहीं बनाए हैं? हुआमेंगिंग को जब यह एहसास हुआ कि क्या हुआ है, तो वह बहुत हैरान हुई। यह उसका सबसे बड़ा रहस्य है, जो उसके मालिक के अलावा बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन फैंग चेन को ये कैसे पता चला? क्या ऐसा हो सकता है कि वह मुझे चुपके से देख रहा हो? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे यह नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने पहले किसी पुरुष के साथ यौन संबंध नहीं बनाए हैं। ये तो बहुत अविश्वसनीय है। जैसे ही हुआमेंगिंग सदमे में थी, उसने फिर से फैंग चेन की आंतरिक आवाज सुनी। ऐसा लगता है कि हुआमेंगिंग मुझे पसंद करती है, लेकिन मैं केवल लिन लोवेई का पीछा करता था और अन्य महिलाओं को नीची नजर से देखता था। अब ऐसा लगता है कि हुआमेंगिंग उस हिमखंड लिन लोवेई से कहीं अधिक आकर्षक है, कहीं बेहतर है। इस आदमी को अंततः आत्म जागरूकता आ गई है और उसे एहसास हो गया है कि मैं उसके लिए कितना अच्छा हूँ, हुआमेंगिंग ने मन ही मन सोचा। लेकिन उसका चेहरा गर्म हो गया और अनायास ही उसके चेहरे पर लालिमा छा गई। चाहे वह कोई भी हो, जब उनके क्रश का पता चलेगा तो वे शर्म महसूस करेंगे। यहां तक कि चंद्र महल की पवित्र युवती भी वैसी ही है। इस आदमी के पास कुछ अंतर्दृष्टि है, वह जानता है कि मैं उस हिमखंड से बेहतर हूं, लिन लोवेई। हुआमेंगिंग के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई और उसकी आंखों में खुशी की झलक दिखाई दी। उसके मनमोहक आकर्षण ने उसके आसपास के सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हुआमेंगिंग के आसपास के लोग चमकती आंखों से उसकी ओर देख रहे थे और लगभग लार टपका रहे थे। एक तरफ खड़ी जू युनक्सियाओ और भी अधिक उत्साहित थी, मन ही मन खुश भी थी। ये हुआमेंगिंग वास्तव में मेरी बुद्धि और कौशल से प्रभावित थी और वास्तव में ऐसी लड़कियों जैसी भावनाएं प्रकट की। उन्होंने मान लिया कि हुआमेंगिंग की अभिव्यक्ति पूरी तरह से उनके कारण थी। चंद्र महल की पवित्र युवती होने के बावजूद कम ही लोग जानते हैं कि यह पवित्र युवती कीचड़ से पूरी तरह अछूती है। हुआमेंगिंग का अनुग्रह प्राप्त करना निश्चित रूप से कोई आसान काम नहीं है। आज तक किसी को भी हुआमेंगिंग की स्वीकृति नहीं मिली है। यह मेरा मौका है, जू युनशियाओ। मुझे इसे जब्त करना होगा और चंद्र महल की इस पवित्र युवती को जीतना होगा। जू युनक्सियाओ ने अपनी मुठियां भींच ली और मन ही मन सोचने लगा। वह हुआमेंगिंग का दिल जीतने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन जाएंगे। फैंग चेन, मैंने अंततः तुम्हें ढूंढ लिया। फैंग चेन को छोड़कर हर कोई हुआमेंगिंग से मोहित था, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। वह भीड़ से बिल्कुल अलग दिख रहा था, बिल्कुल बेमेल। हालांकि फैंग चेन ने अपनी उपस्थिति छुपाई, फिर भी हुआमेंगिंग उसे ढूंढने में कामयाब रही। फैंग चेन को पकड़ने के बाद हुआमेंगिंग बहुत खुश हुई, उसकी मुस्कान मुश्किल से छुपी और वह सीधे उसकी ओर चली गई। प्रत्येक चरण से एक कमल निकलता है, जो सभी प्राणियों को मोहित करता है। हुआमेंगिंग के प्रत्येक कदम से ऐसा प्रतीत होता था कि वह सभी के साथ गहराई से जुड़ रहा है, उनके जुनून को प्रज्वलित कर रहा है और उन्हें खुद को और अधिक नियंत्रित करने में असमर्थ बना रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? वह मेरी तरफ क्यों आ रही है? क्या उसने मुझे पहचाना? कुछ तो गड़बड़ है, मैंने अपनी मौजूदगी पहले ही छिपा ली है, दूसरे पक्ष को पता नहीं चलना चाहिए था। फैंग चेन संदेह से भर गया। हुआमेंगिंग ने अपने दिल में ठंडी सांस ली। इन सभी लोगों के बीच आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो शांत हैं, जब तक कि वह अंधी ना हो। हालांकि वह फैंग चेन के विचारों को सुनने की अपनी क्षमता के बारे में संदेह से भरी थी, लेकिन फैंग चेन की भावनाओं के बारे में जानने के बाद उसने अपना दिल पूरी तरह से खोल दिया। जब तुम्हें सब कुछ पता है तो फिर तुम उसे क्यों छिपा रहे हो? और फैंग चेन ने अभी कहा कि उसकी गंध लिन लोवेई से बेहतर है। हुआ मिंगइंग ने बड़े प्यार से मुस्कुराया, एक आकर्षक आकर्षण बिखेरते हुए उसने फैंग चेन को गहरे स्नेह से देखा, मानो वह अपने प्रेमी को देख रही हो। युवा स्वामी, मैं वानलिंग शहर में नया हूं और इसके बारे में कुछ नहीं जानता। मैं देख रहा हूं कि आप वानलिंग शहर से अच्छी तरह परिचित हैं। क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? हुआ मिंगइंग ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। बोलते हुए उसने अपना नाजुक हाथ आगे बढ़ाया और फैंग चेन का हाथ पकड़ना चाहा। हम इस फूल स्वप्न छाया के साथ क्या हो रहा है? मुझे याद है कि हुआ मिंगइंग कोई चंचल व्यक्ति नहीं थी, तो फिर जब वह पहली बार मुझसे मिली तो वह ऐसी क्यों थी? क्या उन्होंने मुझे पहचाना? फैंग चेन पूरी तरह से हक्का बक्का होकर वहीं खड़ा रहा। उसने बहुत दिमाग लगाया लेकिन फिर भी समझ नहीं पाया कि हुआ मिंगइंग सीधे उसके पास क्यों आई। उसने पहले ही अपनी उपस्थिति छुपा ली थी और अपना रूप भी बदल लिया था। हुआ मिंगइंग की बात तो दूर, गुइक्सु क्षेत्र का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ भी उसका असली चेहरा कभी नहीं देख पाएगा। लेकिन हुआ मिंगइंग सीधे उसके पास आए, उसका उद्देश्य बहुत स्पष्ट था। हम, हालांकि आपने अपनी आभा छिपा ली है और अपना रूप बदल लिया है, यह अफसोस की बात है कि मैं आपके विचार सुन सकता हूँ। मैं आपके विचार सुनकर आपको पहचान सकता हूँ। हुआ मिंगइंग के चेहरे पर अभी अभी घबराहट भरी नजर देखकर उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उसे फैंग चेन की घबराहट भरी अभिव्यक्ति देखकर आनंद आया। मिस, आपने मुझे कोई और समझ लिया है। मैं वानलिंग शहर से परिचित नहीं हूँ। आपको कोई और ढूंढ लेना चाहिए। फैंग चेन की अभिव्यक्ति कठोर हो गई और वह बोला, अध्याय 16, बर्फ में परिवर्तित होने वाला अमर, बर्फ बादलों में परिवर्तित हो जाती है। उसने इनकार कर दिया। यह आदमी क्या सोच रहा है? उसने वास्तव में हुआ मिंगइंग को अस्वीकार कर दिया। ये पता चला कि कई लोगों का दिल टूट गया जब उन्होंने सुना कि हुआ मिंगइंग ने फैंग चेन को आमंत्रित किया था। ये शुद्ध ईर्ष्या, जलन और घृणा है। वह चाहता था कि वह अपनी लार से फैंग चेन को डुबो दे। यदि वे होते तो बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो जाते। ये निमंत्रण हुआ मिंगइंग की ओर से आया था, मैं भला कैसे मना कर सकता था? इस आदमी को निश्चित रूप से पछतावा होगा। बिल्कुल, साथ ही ये लोग इस बात से नाराज थे कि हुआ मिंगइंग ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया था। कई लोग फैंग चेन को हत्या की नीयत से देख रहे थे। यदि नजरों से जान जा सकती तो फैंग चेन हजार बार मर चुका होता। फैंग चेन, मेरे सामने नाटक करना बंद करो, मैं तुम्हें पहले से ही पहचानता हूँ। ये देखकर कि फैंग चेन ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया है, हुआ मिंगइंग ने तुरंत अपनी आवाज प्रसारित की। इस टेलीपैथिक संदेश को सुनकर फैंग चेन वहीं पर स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि वास्तव में उसे पहचान लिया गया है। वह आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका और संदेह से भरे चेहरे से हुआ मिंगइंग की ओर देखा, तुमने मुझे कैसे पहचाना? फैंग चेन उलझन में पड़ गया। उसने इतना भेष बदल रखा था, वह उसे कैसे पहचान सकती थी? इसका कोई मतलब नहीं है, गुप्त, हुआ मिंगइंग ने प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा। उसे गुप्त आनंद की लहर महसूस हुई। फैंग चेन के विचारों को सुन पाना उसके लिए कोई रहस्य नहीं था। यह अभी भी सबसे बड़ा रहस्य है, मैं इसे कभी किसी को नहीं बताऊंगा, खासकर फैंग चेन को नहीं। अगर हम फैंग चेन को बता देंगे तो हम खेलना कैसे जारी रख पाएंगे? फैंग चेन, मुझे नहीं लगता कि आप पवित्र पुत्र के रूप में अपनी पहचान उजागर करना चाहते हैं, है ना? हुआ मिंगइंग मुस्कुराए और अपनी आवाज प्रसारित की। तो क्या हुआ अगर मैं उजागर हो गई? कौन मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? फैंग चेन ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उन्होंने अपनी आभा को छुपाया और अपना रूप बदला। इसका कारण केवल ध्यान आकर्षित करने से बचना था, इससे अधिक कुछ नहीं। वह बस शांति और एकांत में बिना किसी परेशानी के अकेले यात्रा करना चाहता था। यदि उसकी पहचान उजागर हो भी जाती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह उसके लिए महत्वहीन है। क्लाउड हेवन पवित्र भूमि की ताकत निर्विवाद है और उसकी अपनी भी। उसे यकीन नहीं है कि कोई इतना मूर्ख होगा कि उसके पास मुसीबत मोल लेने आए। हुआ मिंगइंग की आंखें चमक उठी, मानो फैंग चेन के शब्द समझ में आ गए हों। ये सच है, लेकिन मुझे लगता है कि पवित्र पुत्र अपनी आभा को छुपा रहे हैं और अपना रूप बदल रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि वह कम प्रोफाइल रखना चाहते हैं। यदि पवित्र पुत्र की पहचान उजागर हो गई तो इसे बहुत परेशानी होगी। हुआ मिंगइंग ने फिर से अपनी आवाज सुनाई, क्या तुम्हें लगता है कि अब मैं ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा हूँ? हर कोई मुझे देख रहा है, फैंग चेन ने असहाय होकर कहा। अब फैंग चेन के लिए ध्यान आकर्षित करने से बचना मुश्किल हो गया है, उसके चारों ओर हर कोई उसे जानलेवा निगाहों से देख रहा है। इसके लिए मुझे दोष मत दो, हुआ मिंगइंग ने मुस्कुराते हुए कहा। फैंग चेन की भावनाओं को जानने के बाद हुआ मिंगइंग पूरी तरह से मुक्त हो गई और उन्मुक्त हो गई। वह उस संकोची व्यक्ति से बिल्कुल अलग था जो वह मूल उपन्यास में फैंग चेन से मिलने के समय था। अतीत में हुआ मेंगिंग हमेशा सहज रहती थी, चाहे उसका सामना किसी से भी हो, लेकिन फोन चेन एक अपवाद था। पवित्र युवती, ये कौन है? हुआ मेंगिंग को स्नेह से मुस्कुराते हुए देखकर ज़ू युनशियाओ अब और शांत नहीं बैठ सकी। उसने तो बस यही सोचा था कि हुआ मेंगिंग उसकी रौबदार और दबंग शख्सियत से प्रभावित है और इस पर खुश भी हो रही है। अब तुमने मेरे साथ ये नौटंकी की है। वह पहले से ही हुआ मेंगिंग को अपना मानता था, वह उसे किसी और को कैसे दे सकता था। यदि वह अपना धैर्य बनाए रखने की कोशिश नहीं कर रहा होता तो वह तुरंत कार्रवाई करता और फैंग चेन को अपंग बना देता। पिघलती बर्फ, आप मुझे सच्चा अमर हुआक्सु कह सकते हैं? फैंग चेन मुस्कुराया और अर्थपूर्ण ढंग से कहा। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। बर्फ पिघल रही है, चाहे नाम वास्तविक हो या नहीं, स्नो कबीले के ज़ू युनक्सियाओ के सामने गलत बोलना एक उकसावे की बात है। इस तरह का नाम चुनना, विशेष रूप से स्नो कबीले के ज़ू युनक्सियाओ के सामने, क्या यह मौत को आमंत्रित करना नहीं है? वास्तव में ये नाम सुनते ही ज़ू युनशियाओ की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आ गया और उससे एक भयानक दबाव उत्पन्न हुआ जिसने सीधे पूरे चौक को घेर लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बच्चे, देखते हैं कि तुम में इस उपाधि के लायक होने की क्या क्षमता है। ज़ू युनक्सियाओ ने अपने क्रोध को दबा दिया और एक भयानक आभा फैल गई जिससे आसपास की जमीन फट गई और पूरा स्थान फट गया, मानो वह फटने वाला हो। भाई ज़ू, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये तो बस एक नाम है। मेरा नाम हुआक्सु एक हुआ सूप है, लेकिन मैंने वास्तव में कभी बर्फ नहीं पिघलाई है। क्या ये सचमुच एक नाम है जिसने आपको अपना संयम खो दिया और आप अनियंत्रित हो गए? फैंग चेन ने अपनी आंखें थोड़ी सी कोड़ ली और मुस्कुराते हुए कहा। ये शुद्ध नैतिक ब्लैकमेल है। ज़ू युनशियाओ, वह मूर्ख हुआ मेंगिंग को पसंद करता है। हुआ मेंगिंग की भावनाओं का ख्याल रखने और साथ ही अपना सज्जन व्यवहार दिखाने के लिए वह इसे जरूर सहन करेगा। यदि ज़ू युनशियाओ इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता तो ऐसा ही हो, सबसे बुरी स्थिति में हम उसे मार सकते हैं। इससे सचमुच बर्फ पिघल जाएगी। तुम बहुत बातूनी हो, है ना? हुआ ज़ू, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। ज़ू युनक्सियाओ ने गहरी सांस ली और कहा। अपने क्रोध को दबाते हुए उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं और वह आधी मुस्कान के साथ फोन चेन को देख रहा था। नहीं 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 भाई ज़ू, आपके द्वारा याद रखा जाना अच्छी बात नहीं है। मैं आपको ये भी सलाह देता हूं कि मुझे याद न करना ही बेहतर है, अन्यथा कुछ अप्रिय घटित हो सकता है, फोन चेन ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। स्नो कबीले का युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति फोन चेन डर नहीं रहा था। ज़ू युनक्सियाओ का उल्लेख नहीं करना, भले ही स्नो कबीले का पवित्र पुत्र आ जाए, फैंग चेन डर नहीं होगा। मिस यंग, ये व्यक्ति वास्तव में कौन है? ज़ू युनक्सियाओ अधीर हो रही थी और फट पड़ना चाहती थी, लेकिन हुआ मेंगिंग के सामने अपना संयम खोने का विचार बहुत ही अतार्किक बात थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम फैंग चेन से कोई लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। ऐसा करने के बजाय हुआ मेंगिंग से दूसरे पक्ष की पहचान का पता लगाना बेहतर होगा ताकि हम बाद में इस आदमी से निपट सकें। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? उसका नाम हुआ ज़ू है, आप उसे मास्टर हुआ ज़ू कह सकते हैं। हुआ मेंगिंग ने पलकें झपकाई और भ्रम से भरे चेहरे के साथ ज़ू युनशियाओ को देखा। उनकी हर मुद्रा आकर्षण से भरी होती है, जो लोगों को मोहित कर लेती है और उनके लिए खुद को उससे मुक्त करना असंभव बना देती है। मैंने बहुत समय पहले सुना था कि स्नो कबीले के लोगों की सुनने की शक्ति कमजोर है, और आज इसे देखकर मैं पुष्टि कर सकता हूं कि ये अफवाहें सच हैं, फोंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे नहीं पता था कि ऐसा है। भाई युनशियाओ, मेरे पास सुनने की शक्ति बढ़ाने वाली कुछ गोलियां हैं, क्या तुम्हें उनकी जरूरत है? हुआ मेंगिंग ने भी मुस्कुराते हुए पूछा। दोनों ने एक विवाहित जोड़े की तरह पूर्ण सामंजस्य के साथ गाया तथा उनके बीच उल्लेखनीय केमिस्ट्री प्रदर्शित की। आप, ज़ू युनशियाओ का चेहरा काला पड़ गया। भले ही वो बेवकूफ था, पर उसे पता था कि ये दोनों उसे बेवकूफ बना रहे थे। उसने अभी सोचा था कि हुआ मेंगिंग उसकी वीरतापूर्ण और दबंग उपस्थिति से प्रभावित थी, जबकि उसे स्वयं उसके सामने सज्जनतापूर्ण व्यवहार बनाए रखना था। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये दोनों एक जैसे होंगे। भाई युनशियाओ, कृपया गुस्सा मत होइए। इतना गुस्सा मत होइए कि आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए, वरना बर्फ सचमुच पिघल जाएगी, फोंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि ज़ू युनशियाओ मौके पर ही फटने वाली थी। आसपास मौजूद लोग जो कुछ देख रहे थे उससे हैरान रह गए। ये स्नो ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर वास्तव में कौन है? वह शांत और संयमित प्रतीत होता है, ज़ू युनशियाओ से बिल्कुल भी नहीं डरता। दूसरे पक्ष की पहचान निश्चित रूप से सरल नहीं है, अन्यथा फूल परी ने उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया होता और यहां तक कि ज़ू युनक्सियाओ के साथ संबंध भी नहीं तोड़े होते। बेचारी ज़ू युनशियाओ, ये दोनों अपने हर शब्द से उसकी नसें चढ़ा रहे हैं। हाहा, अभी अभी ज़ू युनशियाओ बहुत घमंडी था, अब वह इतनी दयनीय स्थिति में है। ये सचमुच बहुत दुखद है, लेकिन मुझे इसे देखने में आनंद आता है। हाहा, मुझे इस आदमी को इतना गुस्सा होते देखना अच्छा लगता है। अध्याय 17। बधाई हो, आप अपनी जान बचाकर भाग निकले। हालांकि वे फोनचेन द्वारा जू यूनक सियाओ को उकसाने से हैरान थे, लेकिन वे मूर्ख नहीं थे और जानते थे कि इस हुआक्स्यू जेनरेन के पास ऐसा करने के लिए, भरोसा करने के लिए कुछ होना चाहिए। इसके अलावा हुआ मिंगिंग और मास्टर हुआक्स्यू के बीच एक दूसरे पर वार पलटवार चल रहा था, जिसमें मास्टर हुआक्स्यू ने बढ़त बना ली थी और हुआ मिंगिंग केवल उनका साथ दे रही थी। इससे पता चलता है कि स्नो ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर की पहचान निश्चित रूप से सरल नहीं है। बेशक ये भी संभव है कि हुआ मिंगिंग उसके प्यार में पड़ गई हो, जिसके कारण उसने ऐसा किया। आखिरकार इन लोगों में कल्पनाशीलता की कमी होती है। दोनों में क्यों नहीं, यह आत्मघाती है। जू यूनशियाओ अब खुद को रोक नहीं सकी और उसने अपना क्रोध प्रकट करते हुए फेनचेन पर हथेली से प्रहार किया। एक भयानक आभा फैली, जिससे एक दिव्य प्रकाश निकला जो भौतिक प्रतीत हुआ, जिसमें अत्यंत प्रबल ऊर्जा थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें अजगर की दहाड़ हो। स्नो कबीले ड्रैगन कबीले के वंशज हैं और उनके पास अत्यंत दुर्जेय शक्ति है। छठा क्षेत्र, सम्राट क्षेत्र। जू यूनशियाओ ने हुआ मेंगिंग के कारण ऐसा व्यवहार किया और वह हुआ मेंगिंग के सामने अपने सज्जनतापूर्ण व्यवहार को दिखाने के लिए इसे सहन कर सका। अब जबकि हुआ मेंगिंग और यह हुआक्सुए जेनरेन एक ही जैसे हो गए हैं, जू यूनशियाओ अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपने आप को अधिक आंकना। फेनचेन आह भरने से खुद को रोक नहीं सका, फिर उसने अपनी उंगली हिलाई और ठंडी रोशनी की एक चमक दिखाई दी। अगले ही पल जू यूनशियाओ का हाथ कटकर खुल गया। एक नर्म पफट के साथ ताजा खून बहकर हवा में फैल गया। आप, जू यूनक्सियाओ का चेहरा सदमे से भरा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि फेनचेन इतना शक्तिशाली होगा। वह महज एक साधारण चाल से पराजित हो गया। उनके बीच का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था, जिसने जू यूनशियाओ को भय से भर दिया। आसपास के लोग भी हैरान थे। वे जानते थे कि फेनचेन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उन्होंने उससे इतना शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। जू यूनक्सियाओ उसके सामने चींटी की तरह थी। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे याद मत रखना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुम सचमुच आज्ञाकारी बच्चे नहीं हो। क्या आपके बुजुर्गों ने आपको यह नहीं बताया कि यदि आप अपने बड़ों की बात नहीं मानेंगे तो आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे, फेनचेन ने बहुत गंभीर स्वर में कहा। जू यूनशियाओ का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। वह तेजी से पीछे हट गया। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ डर भी था। प्रतिद्वंद भी बहुत अधिक शक्तिशाली था। उनकी ताकत पूरी तरह से अलग स्तर पर थी। फेनचेन ने उसे ऐसे डांटा जैसे वह किसी बच्चे को अनुशासित कर रहा हो। मेरी बर्फ पिघलाने वाली हथेली तकनीक की बात करें तो मैंने पहले कभी बर्फ नहीं पिघलाई है। आज मेरी किस्मत अच्छी है, इसलिए मैं पहले एक बर्फ का टुकड़ा पिघलाऊंगा, फेनचेन ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने अपनी हथेली से वार किया और अनगिनत दिव्य प्रकाश प्रकट हुए, जिन्होंने सीधे जू यूनक्सियाओ के सभी भागने के मार्गों को अवरुद्ध कर दिया, जिससे उसके पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं बची। ऐसा महसूस करते हुए कि मानो आसपास की जगह को सील कर दिया गया हो और एक घातक खतरा आ रहा हो, जू यूनशियाओ को अपने दिल में बहुत डर महसूस हुआ। दूसरा पक्ष वास्तव में उसे मारना चाहता था और उन्हें उसकी पहचान की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। साथ ही दाववादी, कृपया रुकें। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी आगे आया। मास्टर हुआक्स्यू, वह हमारे दिव्य पत्थर मंडप में नहीं मर सकता। अगर आप उसे मारना चाहते हैं तो कृपया उसके दिव्य पत्थर मंडप छोड़ने के बाद ऐसा करें, या अगर आप इंतजार नहीं कर सकते तो आगे बढ़ने से पहले उसे दिव्य पत्थर मंडप से दूर ले जाएं। यदि जू यूनक्सियाओ की मृत्यु दिव्य पत्थर मंडप में हुई तो निश्चित रूप से कहना असंभव होगा। आखिरकार जू यूनशियाओ जू कबीले का एक विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्ति था। अगर उसकी मृत्यु दिव्य पत्थर मंडप में होती तो उन सभी पर कुछ जिम्मेदारी आती और वे दोष अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे। तो फिर कोई बात नहीं, अपनी जान बचाकर भागने के लिए बधाई। फेनचेन ने जू यूनक्सियाओ को देखा और शांति से कहा, यदि दिव्य पत्थर मंडप के लोगों का हस्तक्षेप न होता तो जू यूनशियाओ निश्चित रूप से मर जाती। जू यूनशियाओ चुप रही, बिना एक शब्द बोले वहीं खड़ी रही। यदि वह फेनचेन की अवहेलना करता है तो दूसरा पक्ष दिव्य पत्थर मंडप की बाधा के बावजूद फिर से हमला कर सकता है और उसे मार सकता है। दिव्य पत्थर मंडप के प्रभारी व्यक्ति को आगे बढ़ते देख फेनचेन को थोड़ा ऊब महसूस हुआ। हुआ मिंगिंग की कमर पर हाथ रखते हुए उसने जू यूनशियाओ की ओर देखा और शांति से कहा, चूंकि दिव्य पत्थर मंडप ने ऐसा कहा है, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे, लेकिन ये पिछली बार की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अगर अगली बार ऐसा हुआ, भले ही स्वर्ग का राजा स्वयं आगे आए, तो भी मैं तुम्हें मार डालूंगा। जू यूनक्सियाओ चुप रहा। उसे डर था कि अगर उसने कुछ कहा तो वह फेनचेन को उसे मारने का कारण दे देगा। अन्य लोग शायद ऐसा करने का साहस न करें, लेकिन फेनचेन के पराक्रम को देखकर वे जानते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं है जिसे करने की हिम्मत ये परिवार न कर सके। अगर जू यूनशियाओ ने एक शब्द और कहा होता तो वह शायद एक ठंडी लाश बन जाता। यहां से चले जाओ, मेरे रास्ते में मत आओ, फेनचेन ने अपना हाथ हिलाया। उसने जू युनक्सियाओ को दया के कारण नहीं मारा, बल्कि इसलिए मारा क्योंकि जू युनक्सियाओ मूल कहानी में एक अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण पात्र था, एक मामूली खलनायक। कई बार जियाओ युनटिंग के दिखावे के प्रयास जू युनशियाओ पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। यदि मैं अब जू युनशियाओ को मार दूं, तो क्या यह मूल कथानक में हस्तक्षेप नहीं करेगा और मेरी योजना को असफल नहीं कर देगा? वह एक बहुत अच्छा इनाम भी खो देगा। ये कहना होगा कि जू युनक्सियाओ एक बुद्धिमान व्यक्ति है जो लचीलापन और दृढ़ता दोनों में सक्षम है। यह एहसास होने के बाद कि वह फोन चेन का मुकाबला नहीं कर सकता, उसने मौत को बुलाना जारी नहीं रखा। इस दृष्टिकोण से वह एक बुद्धिहीन व्यक्ति नहीं है। हालांकि फैन चेन को यह नहीं पता था कि यह ठीक इसलिए था क्योंकि उसने इस बार जू युनक्सियाओ को जाने दिया था, जिससे दूसरी पार्टी कड़ी मेहनत करने और लगन से खेती करने के लिए दृढ़ हो गई थी। जब वे फिर से जियो युनटिंग से मिले तो अभी भी अपरिपक्व जियो युनटिंग को जू युनक्सियाओ द्वारा बार बार पीटा गया। ये सुनकर जू युनशियाओ ने कुछ नहीं कहा, मुड़कर चली गई और अपने पिछले अभिमानी व्यवहार को बिल्कुल भी नहीं दिखाया। दरअसल वो बेवकूफ नहीं था। अगर बेहद घमंडी हुआ मेंगिंग ऐसा व्यवहार कर सकती है, तो इसका मतलब है कि सामने वाले की पहचान भी असाधारण होगी। उनसे ऊंचे दर्जे वाले लोग ही पवित्र स्थल हैं। यदि उसके जैसा कोई व्यक्ति दूसरे पक्ष के हाथों मर जाए, तो उसके पीछे का स्नो कबीला कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब युवा पीढ़ी लड़ रही हो तो पुरानी पीढ़ी हस्तक्षेप नहीं कर सकती, यह एक अलिखित नियम है। इसके अलावा स्नो क्लान उसके लिए 5 पवित्र भूमि को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाएगा, ऐसा कदम पूरी तरह से प्रतिकूल होगा। उसका मूल्य अभी इतना अधिक नहीं है कि स्नो कबीला ऐसा करे। पवित्र पुत्र सचमुच उल्लेखनीय है, मैं उसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। हुआ मिंगेन की आकर्षक आवाज गूंज उठी जो अंतहीन प्रलोभन से भरी थी। यहाँ तक कि फैंग चेन भी बहुत प्रभावित हुआ। वह सचमुच मनमोहक है, फैंग चेन ने मन ही मन कोसा, ये सोचकर कि हुआ मेंगिंग वास्तव में लोगों की मानसिकता के साथ खिलवाड़ कर रही थी। पर मुझे ये पसंद है। फैंग चेन कोई संत नहीं है, वह एक सामान्य आदमी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इन चीजों को अस्वीकार नहीं करेगा। इसके अलावा वह हुआ मेंगिंग को बहुत अच्छी तरह से जानता था, ये जानते हुए कि यद्यपि यह महिला चरित्रहीन लगती थी, वह वास्तव में एक बहुत ही रूढ़िवादी व्यक्ति थी। ये हुआ मेंगिंग के चरित्र डिजाइन की भी एक विशेषता है जो एक बड़ा विरोधाभास प्रस्तुत करता है। हुआ मिंगिंग लिन लोवेई से भी अधिक रूढ़िवादी थी। एक बार जब आप किसी पर अपना मन बना लेते हैं तो आप किसी अन्य के प्रति तब तक आकर्षित नहीं होंगे जब तक कि आप उस पर से पूरी तरह से विश्वास न कर लें। मूल कहानी में ये फैंग चेन ही था जिसने हुआ मिंगिंग को बार बार निराश किया था, जिससे उसका दिल टूट गया और उसने उससे दूरी बना ली। फिर भी जब फैंग चेन गिरने वाला था तब भी हुआ मिंगिंग ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके पास ऐसा करने की क्षमता नहीं थी। कोई भी आदमी अच्छा नहीं होता। वे भले ही सीधे साधे सज्जन दिखते हों, लेकिन असल में वे अंदर से सड़े हुए होते हैं। पाह, हुआ मिंगिंग ने मन ही मन शिकायत की, अगर मैं फैंग चेन के विचार नहीं सुन पाती तो मैं इस आदमी के द्वारा मूर्ख बन जाती। यह आदमी सच्चा इंसान नहीं है, वह दिल से दुष्ट व्यक्ति है। हालांकि मिंगिंग ने इन फूलों को अस्वीकार नहीं किया, इसके विपरीत वह उन्हें कुछ हद तक पसंद करती थी। इसे संभवतः वे मुझसे प्यार करो, मेरे कुत्ते से प्यार करो कहते हैं। अगले ही पल हुआ मिंगिंग ने अपना पूरा शरीर फोन चेन से सटा दिया, मासूमियत से अपनी आंखें झपकाते हुए कहा, महाराज मैं अब थोड़ा थक गया हूँ, क्या आप मुझे थामने को तैयार हैं? अध्याय 18, सांप वंश के पवित्र पुत्र से मुलाकात, सांप पकड़ने वाला ताओवादी बनना। ये सुनकर फैंग चेन के होंठ फड़क उठे। इस छोटे शैतान से निपटना सचमुच कठिन है। क्या आपने ऐसा करते समय मेरी भावनाओं पर विचार किया? क्या आपने अपने आसपास हथियारों और आगजनी करने वालों की निगाहें नहीं देखी? सभी की निगाहें फोन चेन पर टिकी थी, उनकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थी। कई लोगों ने तो अपने शक्तिशाली हथियार भी लहराए और अपने हाथों को आपस में रगड़ना शुरू कर दिया, किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार। युवक तुम जो कर रहे हो उससे जनता का क्रोध भड़क रहा है। इस बर्फ रूपांतरण करने वाले अमर को मार डालो और पवित्र युवती को वापस छीन लो। लड़के मरने के लिए तैयार हो जाओ, आज या तो तुम या मैं अपने जीवन के साथ संत की रक्षा करने की शपथ लेता हूँ। इन लोगों की आंखों में हत्या का इरादा था, उनकी निगाहें आग उगलती हुई प्रतीत हो रही थी। मैं पुरुषों को बर्दाश्त कर सकती हूं, लेकिन महिलाएं भी ऐसी क्यों हैं? फैंग चेन ने मन ही मन सोचा, वह पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था। हुआ मिंगिंग सचमुच आकर्षक है, वह पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए अप्रतिरोध्य है। गले न लगना, फैंग चेन ने हुआ मिंगिंग की ओर देखा और गंभीरता से कहा, मिस मिंगिंग, पुरुषों और महिलाओं को एक दूसरे को छूना नहीं चाहिए, आपको खुद ही चले जाना चाहिए। इसके अलावा मैं देख रहा हूं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा है, मेरा अनुमान है कि आप बिना किसी समस्या के कुछ राक्षसी जानवरों को मार सकते हैं। आप किस लिए गले लगा रहे हैं? एक सीधे आदमी के रूप में मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? वह आदमी बहुत नीच है, हुआमिंग एंग ने मन ही मन कोसा। अभी कुछ देर पहले मैं उसे एक छोटी शैतान समझ रहा था और कह रहा था कि मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन अब मैं उसे इतनी गंभीरता से अस्वीकार कर रहा हूँ। सचमुच ये दुनिया में पुरुषों के बारे में सबसे पाखंडी बात है। हालांकि हुआमिंग एंग ने आगे कुछ नहीं कहा, वह केवल छेड़खानी का अभिनय कर रही थी। इसके अलावा वह जानती थी कि इस तरह से जारी रखने से फैंगचेन केवल अप्रसन्न होगा। कुछ बातें अनकही ही रहना बेहतर है। जब आपको लगे कि यह सही है तो आपको रुक जाना चाहिए। दिव्य पत्थर मंडप के प्रभारी व्यक्ति ने पास आकर कहा, मिस मेंगिंग, सच्चे व्यक्ति हुआक्स्यू, ऊपर नीलामी शुरू हो चुकी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप दोनों की रुचि है। हर साल दिव्य पत्थर मंडप एक दिव्य पत्थर नीलामी आयोजित करता है, जहां सभी दिव्य पत्थरों को दिव्य पत्थर मंडप द्वारा सावधानीपूर्वक चुना जाता है। इनमें से अधिकांश दिव्य पत्थरों में मूल्यवान वस्तुएं होती हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में ऐसे पत्थर होते हैं जो बेकार होते हैं और जिनके अंदर कुछ भी नहीं होता। कई अवसरों पर उन्होंने दिव्य सोने और दिव्य जैद जैसे कई खजाने का पता लगाया, और एक अवसर पर उन्होंने अमरता का अमृत भी प्राप्त किया, जिसने विभिन्न शक्तिशाली ताकतों के बीच एक भयंकर प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया। हालांकि ऐसी नीलामी में भाग लेने के लिए हर कोई योग्य नहीं होता, इसके लिए पर्याप्त स्थिति और पद की आवश्यकता होती है। फैंगचेन मूल रूप से योग्य नहीं था, लेकिन उसने देखा कि हुआमिंग उसे खुश करने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। इसके अलावा फैंगचेन का ज़ू यूनिक्सियाओ से पुनर्तः भयभीत न होना उसकी पहचान की पुष्टि करता है। बिना किसी हैसियत के कोई भी ज़ू यूनिक्सियाओ को अपमानित करने और यहां तक कि उस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। हुआमिंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फैंगचेन की ओर देखा। इस यात्रा का कारण यह था कि यूनिक्सिया पैलेस का स्नो कबीले के साथ सहयोग था, इसलिए मैं ज़ू यूनिक्सियाओ के साथ आया था। अब जबकि ज़ू यूनिक्सियाओ को भगा दिया गया है और वह फैंगचेन की भावनाओं को जानती है और उसने उन्हें अस्वीकार नहीं किया है, उसने निर्णय फैंगचेन पर छोड़ दिया है। ये देखकर दिव्य पत्थर मंडप के प्रभारी व्यक्ति को और भी अधिक विश्वास हो गया कि फैंगचेन की पहचान सरल नहीं थी। हुआमिंग एंग के आकर्षक रूप से धोखा ना खाएं, ये सिर्फ एक दिखावा है। बहुत से लोग जानते हैं कि हुआमिंग को कोई भी इस तरह से व्यवहार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, या उसे कुछ और शब्द कहने के लिए भी अपने इतने करीब नहीं ला सकता। उसके सामने खड़ा यह आदमी एक अपवाद है। तो फिर चलो चल कर देखें, फैंगचेन ने सिर हिलाया और कहा। मूलतः मैं यहाँ शेंशिगे में पानी का परीक्षण करने आया था। अब जब हम यहाँ हैं तो हम इसे कैसे भूल सकते हैं। दिव्य पाषाण मंडप के ऊपरी तल पर एक और दुनिया छिपी हुई है जो अनगिनत दुर्लभ खजानों से भरी है। वहां रखी कुछ चीजें अगर बाहर छोड़ दी जाएं तो लोगों में उनके लिए उन्माद और लड़ाई छिड़ जाएगी। हालांकि चौक के केंद्र में 10 पवित्र पत्थर थे, जिनमें से प्रत्येक का आकार अलग था। इनमें से कुछ सैकड़ों मीटर ऊंचे हैं, एक छोटे पहाड़ के समान, जबकि अन्य केवल मुट्ठी के आकार के हैं। हालांकि ये सभी दिव्य पत्थर विशेष सामग्रियों में लिपटे हुए हैं जो दिव्य संवेदना का पता लगाने में बाधा डाल सकते हैं। यदि किसी की साधना संत लोक तक पहुंच भी जाए तो भी दिव्य ज्ञान से यह पता लगाना असंभव है कि अंदर क्या है। जब फैंगचेन वहां पहुंचा तो वहां पहले से ही काफी लोग इकट्ठा हो चुके थे। हालांकि ये लोग साधारण व्यक्ति नहीं हैं, इनमें से कई शक्तिशाली ताकतों के प्रतिनिधि हैं। हुआमिंग के आगमन ने बहुत ध्यान आकर्षित किया, खासकर क्योंकि वह और फैंगचेन बहुत करीब थे और वह फैंगचेन का हाथ पकड़े हुए थी। अफवाह है कि फूल परी देखने में तो बदचलन लगती है, लेकिन असल में वह अलग थलग रहती है और हमेशा लोगों से दूरी बनाए रखती है। लेकिन ऐसा लगता है कि यह सच नहीं है, किसी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। जो व्यक्ति बोल रहा था वह एक युवा व्यक्ति था जिसने सफेद कपड़े पहने थे, सफेद बाल थे और उसकी त्वचा बहुत गोरी थी। हालांकि हुआमिंग की त्वचा के विपरीत उसकी त्वचा अत्यंत पीली थी, किसी मृत व्यक्ति की तरह, जिसे देखना चौंकाने वाला था। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी, किसी भी भावना से रहित। मैं बस उन लोगों पर निर्भर हूं जिन्हें मैं पसंद करता हूं। हुआमिंग मुस्कुराए और बेपरवाही से बोली, हालांकि मून पैलेस की प्रतिष्ठा खराब है, लेकिन यह व्यभिचार का स्थान नहीं है। इसके अलावा सर्प वंश के पवित्र पुत्र को दूसरों को सिर्फ इसलिए निशाना नहीं बनाना चाहिए क्योंकि मैंने अतीत में तुम्हें अस्वीकार कर दिया था। अतीत में हुआमिंग ऐसी व्यंग्यात्मक टिप्पणियों को सहन कर लेती थी और उन्हें अनसुना करने का नाटक करती थी क्योंकि दूसरा पक्ष उच्च स्थिति का था। सर्प वंश का पवित्र पुत्र प्राचीन सर्प वंश एक राक्षस जाति का वंशज है। दूसरे पक्ष का दर्जा अत्यंत ऊंचा था, महान पवित्र भूमि के पवित्र पुत्रों से कम नहीं। अतीत में यदि हुआमिंग का ऐसे किसी व्यक्ति से सामना होता था तो वह केवल मुस्कुराकर उनसे निपट लेती थी। लेकिन अब चीजें अलग हैं। उसके साथ फैंगचेन है, इसलिए उसे परवाह नहीं कि सामने वाला कौन है। इसके अलावा फैंगचेन की स्थिति दूसरे पक्ष से बदतर नहीं है, बल्कि बेहतर भी हो सकती है। हे, फूल परी जिस तरह दिखती है उससे लगता है कि उसे एक अच्छा साथी मिल गया है। सर्प वंश के पवित्र पुत्र ने उपहास किया, उसका स्वर क्रोध से भरा हुआ था। उसकी निगाह तुरंत फोन चेन पर गई और उससे एक शक्तिशाली आभा निकली, मानो वह फोन चेन को चेतावनी देना चाहता हो। हुआ मेंगिंग की सुंदरता अद्वितीय है और उसके कई प्रेमी हैं, जिनमें सांप वंश का ये पवित्र पुत्र भी शामिल है। हालांकि अपने अन्य प्रेमियों की तरह उन्हें हुआ मेंगिंग ने अस्वीकार कर दिया था। हालांकि चूंकि यह पवित्र पुत्र एक उच्च पद पर था, इसलिए हुआ मेंगिंग को अभी भी उसे कुछ सम्मान देना था। फूल परी, लगता है तुम्हारे स्वाद में कमी है। उन्होंने वास्तव में एक बेकार व्यक्ति को काम पर रखा है। ये सोचकर कि कैसे हुआ मेंगिंग ने उसे अस्वीकार कर दिया था और हुआ मेंगिंग और फोंग चेन को एक साथ इतने घनिष्ठ रूप से देखकर सर्प वंश के पवित्र पुत्र को क्रोध की लहर महसूस हुई। ये देखकर कि दूसरे पक्ष के पास कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, सर्प वंश का पवित्र पुत्र और भी अधिक क्रोधित हो गया। फूल परी, ये युवा स्वामी कौन है? तुम हमें उससे परिचय क्यों नहीं कराती? वक्ता एक युवा व्यक्ति था। वह महान जो राजवंश के दूसरे राजकुमार हैं। इस दूसरे राजकुमार में असाधारण प्रतिभा है और वह एक दुर्लभ साधना प्रतिभा है। दूसरा पक्ष अब फैंग चेन की पहचान के बारे में बहुत उत्सुक है। वह हुआ मेंगिंग के घमंड को जानता था। वे प्रतिभाशाली लोग उसकी नजरों से ओझल थे, फिर भी वह अपने सामने वाले युवक के साथ इतनी अंतरंग थी। कौन उत्सुक नहीं होगा? एक दुष्ट साधक, जिसे उसके उपनाम सांप पकड़ने वाले ताओवादी से जाना जाता है। उस समय मेरे माता पिता अशिक्षित थे और चूंकि मेरा परिवार पीढ़ियों से पहाड़ों में सांप पकड़ता रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे ये नाम दिया। फैंग चेन ने ईमानदार और सरल अभिव्यक्ति के साथ कहा। ये सुनकर उसके आसपास खड़े लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। दिव्य पत्थर मंडप के प्रभारी व्यक्ति विशेष रूप से फैंग चेन को देखने से खुद को रोक नहीं सके। अध्याय 19, सर्प कुल का पवित्र पुत्र और चीलतियानी। नीचे की ओर वह स्वयं को बर्फ बदलने वाला अमर कहता था, लेकिन पलक झपकते ही वह सांप पकड़ने वाला ताओवादी बन गया। हालांकि इस घटना के माध्यम से दिव्य पत्थर मंडप के प्रभारी व्यक्ति को और भी अधिक यकीन हो गया कि दूसरे पक्ष की पहचान सरल नहीं थी। इसे प्राप्त करने के लिए न केवल मजबूत व्यक्तिगत योग्यता की आवश्यकता है, बल्कि एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि की भी आवश्यकता है। कम से कम प्रतिद्वंद्वी के प्रति भय का पूर्ण अभाव होना चाहिए। स्नो क्लान ठीक है, उनकी समग्र शक्ति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन सर्प कुल का पवित्र पुत्र अलग है। वह प्राचीन काल में राक्षस कुल के शाही परिवारों में से एक था और आज भी वह शीर्ष शक्तियों में से एक है। मुझे आश्चर्य है कि यह युवक किस पवित्र भूमि का मुख्य शिष्य है, दिव्य पत्थर मंडप के प्रभारी व्यक्ति ने मन ही मन सोचा। उन्होंने पुष्टि की है कि फोंग चेन पवित्र भूमि का एक प्रमुख शिष्य है। जहां तक पांच पवित्र भूमियों का सवाल है, वे कहां से आए, उन्हें अभी तक पता नहीं है। युवा स्वामी, आप सचमुच मजाक करना जानते हैं। दूसरे राजकुमार की अभिव्यक्ति रुक गई और वह बोलने से खुद को रोक नहीं सका। इस व्यक्ति ने सहजता से सांप पकड़ने वाले ताओवादी होने का दावा किया। क्या ये सांप वंश के पवित्र पुत्र को लक्ष्य नहीं कर रहा है? दिलचस्प, दिलचस्प। पास खड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। यद्यपि वह फोंग चेन की पहचान नहीं जानता था, फिर भी फोंग चेन के कार्यों से वह बहुत प्रसन्न हुआ। बेटे, तुम बहुत घमंडी हो, घुटने टेको और माफी मांगो। लंबे सुनहरे बालों वाला एक आदमी आगे बढ़ा। उसकी तीखी और पैनी आंखें फैंग चेन को गौर से घूर रही थीं। उसने एक शक्तिशाली आभा बिखेरी, जिससे फैंग चेन को घुटनों के बल बैठने पर मजबूर होना पड़ा। इस व्यक्ति का नाम यंग तियानई है, जो विशाल का ईगल कबीले का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है और उसका सांप कबीले के पवित्र पुत्र के साथ बहुत अच्छा संबंध है। सर्प वंश के पवित्र पुत्र को धमकाते देख वह तुरंत आगे बढ़ा। यंग तियानई की आभा अत्यंत शक्तिशाली थी, लेकिन फैंग चेन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फैंग चेन ने दूसरे व्यक्ति की ओर देखा और मुस्कुराते हुए शांति से कहा, क्या आप घुटने टेकना चाहते हैं? दरअसल मेरी एक खासियत है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि जानवर मेरे सामने घुटने टेकें। हालांकि यदि आप मेरे सामने घुटने टेकने पर जोर देते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगले ही क्षण एक शक्तिशाली आभा प्रस्फुटित हुई, जो अभी प्रतिद्वंद्वी की दमनकारी शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। जब यह आभा यंग तियानई पर उतरी तो इसने सीधे उसके विशाल शरीर को कुचल दिया। एक पल में यंग तियानई फोंग चेन के सामने घुटने टेक बैठी। लड़के, तुम मौत की तलाश में हो, सर्प वंश के पवित्र पुत्र ने क्रोध से विकृत चेहरा बनाकर फोंग चेन पर हमला बोल दिया। फैंग चेन ने दूसरे पक्ष की ओर देखा, उसके चेहरे पर उदासीनता थी। वह अपने हाथ पीठ के पीछे करके खड़ा था। उसकी आभा बाहर की ओर फैल रही थी, मानो कोई देवता सभी जीवों को देख रहा हो। तुरंत ही आसपास के सभी लोगों को दमन का एक बेहद गहरा एहसास हुआ। सबसे पहले इसे महसूस करने वाला स्वाभाविक रूप से सर्प वंश का पवित्र पुत्र था और फिर विशालकाय चील वंश की यंग तियानी थी। दोनों को ऐसा लगा जैसे वे किसी बर्फ के तहखाने में गिर गए हों और उनके दिलों में डर का भाव उमड़ पड़ा। भारी दबाव के कारण उन्हें सांस लेना मुश्किल हो रहा था और घुटन का एहसास उन्हें घेर रहा था। साथ ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनकी आत्माएं कांप रही हैं, मानो वे किसी भी क्षण नष्ट हो जाएंगी। ज्ञान का क्षेत्र। सर्प कुल का पवित्र पुत्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने जल्दी से अपने डर को दबाया, दांत पीस लिए और ठंडी आंखों से फैंग चेन को गौर से देखने लगा। वह और यंग तियानई दोनों ही सम्राट क्षेत्र के शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं और सम्राट क्षेत्र के अंतिम चरण में हैं। वे ज्ञानोदय क्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं हैं और जल्द ही सफलता प्राप्त कर लेंगे। सामान्यतः ज्ञानोदय क्षेत्र में किसी शक्तिशाली व्यक्ति का सामना करते समय उन्हें इतना दबाव महसूस नहीं होता, लेकिन इस बार जब फैंग चेन का सामना हुआ तो उसे पहाड़ जैसा भारी दबाव महसूस हुआ। इससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वे शून्य क्षेत्र के किसी शक्तिशाली व्यक्ति या यहां तक कि संघ क्षेत्र के किसी शक्तिशाली व्यक्ति का सामना कर रहे हों। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि उनके सामने जो व्यक्ति है वह ऐसा व्यक्ति है जिसे वे संभाल नहीं सकते। सर्प कुल के पवित्र पुत्र ने गहरी भौहें चढ़ाई। भले ही वे एक क्षेत्र से अलग हों, फिर भी अंतर इतना बड़ा नहीं हो सकता। यहां तक कि यदि प्रतिद्वंद्वी ज्ञानोदय क्षेत्र में है तो भी वह कुछ चालों का सामना कर सकता है और प्रतिद्वंद्वी के दबाव का सामना करने में असमर्थ नहीं होगा, या यहां तक कि उसे चाल चलने का मौका भी नहीं मिलेगा। सर्प कुल के पवित्र पुत्र की तुलना में यंग तियानई की हालत और भी बदतर थी। उसका पूरा शरीर दबा हुआ था और वह जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। वह बस फैंग चेन को गौर से देख सकता था। मुझे जानवरों का मेरे सामने घुटने टेकना पसंद नहीं। तुम सब उठो। फैंग चेन मुस्कुराया, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। फैंग चेन को ये अनियंत्रित लोग कभी पसंद नहीं आए। हालांकि फैंग चेन परेशानी खड़ी करने वालों में से नहीं था। जब तक दूसरा पक्ष उसे उकसाता नहीं, वह उनसे परेशान नहीं होता। ये दोनों मुसीबत खड़ी करने और हमारी दयालुता का फायदा उठाने के लिए बाहर आए हैं। हम उन्हें सबक कैसे न सिखाएं? ये सुनकर यंग तियानई और सर्प वंश के पवित्र पुत्र आक्रोश से भर गए और उन्होंने चाहा कि वे दौड़कर फैंग चेन को मार डालें। फैंग चेन ने उन्हें पूरी तरह से कुचल दिया था और अपमानित किया था। यदि फैंग चेन को नहीं मारा जा सका तो उनकी नफरत शांत नहीं होगी। हालांकि फैंग चेन को मारना उनकी नफरत को शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं था। वे उसे फिर से मारने से पहले उसे बुरी तरह प्रताड़ित करना चाहते थे। तुम वहां किस लिए खड़े हो? तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? यंग तियानी ने कहा, मैं बहुत गुस्से में हूं। आखिर इन गार्डों के साथ क्या हो रहा है? क्या तुमने नहीं देखा कि उसका अपमान किया गया? तुम बस वहां खड़े होकर देख रहे हो। आज केवल वही अपमानित नहीं हुआ, सर्प कुल के पवित्र पुत्र को भी कष्ट सहना पड़ा। सर्प कुल का पवित्र पुत्र दानव और सर्प कुल के सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन चाहे उन्होंने दूसरे व्यक्ति को कितना भी संकेत देने की कोशिश की, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आप चाहते हैं कि वे मुझे सबक सिखाएं, लेकिन वे सब इस समय अपना ख्याल रखने में इतने व्यस्त हैं कि वे आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? फैंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि हम सहायता पाने की बात कर रहे हैं तो ऐसा कौन है जिसके पास सहायता नहीं है? फैंग चेन, मेघ स्वर्ग पवित्र भूमि का पवित्र पुत्र है जिसकी स्थिति पारलौकिक है। पवित्र पुत्र होने के साथ साथ वह मेघ स्वर्ग पवित्र भूमि के 10,000 साल के इतिहास में सबसे राक्षसी शिष्य होने के लिए भी पर्याप्त शक्तिशाली है। अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण स्वाभाविक रूप से उन्हें क्लाउड हेवन पवित्र भूमि से ध्यान प्राप्त हुआ। इसलिए फैंग चेन का संरक्षक भी असाधारण है। जो व्यक्ति फैंग चेन की रक्षा करता है वह एक संघ क्षेत्र विशेषज्ञ है। ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति किसी भी प्रमुख शक्ति का पूर्ण स्तंभ होगा। ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति आसानी से कोई कार्य नहीं करेगा, किसी दूसरे का रक्षक बनना तो दूर की बात है। हालांकि फैंग चेन एक अपवाद था, क्योंकि उसे एक संघ क्षेत्र विशेषज्ञ का संरक्षण प्राप्त था। इससे पता चलता है कि यूनतियान पवित्र भूमि फैंग चेन को कितना महत्व देती है। ये कहा जा सकता है कि यूनतियान पवित्र भूमि ने अपनी लगभग सारी आशाएं अकेले फैंग चेन पर ही लगा रखी हैं। उसका लक्ष्य अपनी सीमाओं को पार करना और सम्राट स्तर का विशेषज्ञ बनना है। ये सोचकर फैंग चेन का दिल उलझन में पड़ गया। यदि मूल उपन्यास में फैंग चेन को प्यार नहीं हुआ होता, लिन लोवेई के प्रति आसक्त नहीं हुआ होता और उसने अपना सारा ध्यान उस पर केंद्रित नहीं किया होता, तो उसके पास एक शक्तिशाली सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ बनने का मौका होता। सर्प कुल के पवित्र पुत्र के संरक्षक को दबा हुआ देखकर आसपास की भीड़ में कोलाहल मच गया। उनकी आंखें सदमे से भर गईं। सर्प कुल का पवित्र पुत्र एक पारलौकिक पद रखता है। प्राचीन राक्षस जाति का उत्तराधिकारी होने के नाते उसका संरक्षक भी असाधारण होना चाहिए। त्यानिक्सुआन विश्व में ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति निश्चित रूप से एक शीर्ष विशेषज्ञ होगा, फिर भी ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी दबा दिया गया। ये सब इतनी शांति से हुआ कि किसी को पता ही नहीं चला। इसे प्राप्त करने के लिए प्रतिद्वंद्वी के पास सर्प वंश के पवित्र पुत्र संरक्षक से कहीं अधिक शक्ति होनी चाहिए। इससे ये भी पता चलता है कि दोनों के बीच कौशल में काफी अंतर है, अन्यथा वे यह उपलब्धि हासिल नहीं कर पाते। आखिर यह व्यक्ति कौन है? सर्प कुल के पवित्र पुत्र को हर पहलू में पूरी तरह से कुचल दिया गया। निश्चित रूप से ऐसी कोई बड़ी ताकत नहीं है जो ऐसा कर सके। इसके अलावा दूसरा पक्ष एक मानव है। क्या ये प्राचीन कन्फ्यूशियस परिवार का पवित्र पुत्र हो सकता है? अध्याय 20, दिव्य पत्थर मंडप, हान पर्वत ढलान। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन कोन परिवार के पवित्र पुत्र में असाधारण प्रतिभा है। वह पिछले 100,000 वर्षों में कोन परिवार का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति है और उसका रूप रंग सम्राट जैसा है। पूरा कोन परिवार उससे बड़ी उम्मीदें लगाए हुए है। अगर वह वही है तो ये सब समझ में आता है। वह किन राजवंश का युवराज भी हो सकता है। वह असाधारण प्रतिभा का धनी व्यक्ति भी है। उसके पास किन वंश के ड्रैगन का वंश है और उसकी शक्ति और भी अधिक प्रबल है। हालांकि एक और व्यक्ति है। आप बादलों के स्वर्ग की पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र के बारे में भूल गए हैं। यदि आपने इसका उल्लेख नहीं किया होता तो मैं लगभग भूल ही गया होता। यद्यपि बादलों के स्वर्ग का पवित्र पुत्र अभी तक पैदा नहीं हुआ है, फिर भी उसकी प्रतिभा निर्विवाद है। वह निश्चित रूप से प्रतिभाशाली लोगों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। कौन परिवार का पवित्र पुत्र कई वर्षों से एकांतवास में है और कभी दुनिया में प्रकट नहीं हुआ। उसकी स्थिति कोई नहीं जानता। महान किन राजवंश का युवराज कई वर्षों से एकांतवास में है, इसलिए ये स्पष्ट रूप से वह नहीं है। इसलिए ये बहुत संभव है कि वह मेघ स्वर्ग पवित्र भूमि का पवित्र पुत्र हो। अगर यह बादलों के स्वर्ग की पवित्र भूमि का पवित्र पुत्र है तो सर्प कुल के पवित्र पुत्र ने इस बार सचमुच अपनी क्षमता से ज्यादा काम ले लिया है। इतने सारे लोगों के साथ खिलवाड़ करने के अलावा आपको बादलों के स्वर्ग की पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र को क्यों उकसाना पड़ा? क्या ये पिटाई का बहाना नहीं है? वास्तव में फैंग चेन की पहचान का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। आखिरकार कुछ ही लोग हैं जो सर्प वंश के पवित्र पुत्र को हर पहलू में कुचल सकते हैं। इसके अलावा चून की दूसरा पक्ष मानव है, इसलिए अनुमान लगाना और भी आसान है। तभी सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा, फोंग चेन की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, यूनतियान के पवित्र पुत्र, मैं हान शांगसी हूँ, दिव्य पत्थर मंडप का प्रभारी व्यक्ति। महामहिम यूनतियान के पवित्र पुत्र, क्या आप कृपया मुझे इन दोनों को कुछ समय के लिए रिहा करने का सम्मान प्रदान कर सकते हैं? बेशक मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नीलामी शुरू होने वाली है और यदि कोई और परेशानी हुई तो यह आगे नहीं बढ़ पाएगी। यदि महाराज इस मामले को स्थगित करने को तैयार हैं, तो आप और फूल परी इन 10 दिव्य पत्थरों में से किसी एक को चुन सकते हैं। हान शान ने घबराई हुई अभिव्यक्ति के साथ फैंग चेन को देखा। यद्यपि दिव्य पत्थर मंडप के पास एक शक्तिशाली समर्थक है, लेकिन अंततः वह फोंग चेन के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अगर ये लोग दिव्य पाषाण मंडप में मुसीबत में पड़ गए तो मंडप के लिए बहुत परेशानी खड़ी हो जाएगी। दिव्य पाषाण मंडप के प्रभारी होने के नाते स्वाभाविक रूप से सबसे पहले वही इसका खामियाजा भुगतेंगे। उन्हें जाने देना ठीक है, बस उस आदमी से माफी मांग लो। ये कहते हुए फैंग चेन ने सर्प वंश के पवित्र पुत्र की ओर देखा। ये सुनकर हान शांगसी के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। अगर वह चाहता था कि सर्प कुल का पवित्र पुत्र माफी मांगे तो उसे मार ही देना चाहिए था। ये प्रतिभाशाली और विलक्षण प्रतिभाएं विभिन्न शक्तिशाली ताकतों में उच्च पदों पर आसीन हैं, जिससे वे स्वाभाविक रूप से अहंकारी और अनियंत्रित हो जाते हैं। उनसे माफी मांगना और अपनी गलतियां स्वीकार करवाना बेहद मुश्किल है। इसके अलावा ऐसी परिस्थितियों में भले ही इसका मतलब मृत्यु हो, सर्प वंश का पवित्र पुत्र कभी भी इस अनुरोध पर सहमत नहीं होगा। असंभव, मैं उससे कभी माफी नहीं मांगूंगा। सर्प वंश के पवित्र पुत्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के इनकार कर दिया। उसी समय उसने नाराजगी भरे चेहरे से फैंग चेन को देखा और कहा, भले ही तुम मुझे मार डालो, मैं उससे कभी माफी नहीं मांगूंगा। क्या मजाक है, अगर वो सच में माफी मांग ले और अपनी गलती मान ले तो उसका क्या चेहरा बचेगा? वो जहां भी जाएगा लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि वह माफी मांगता है और अपनी गलती स्वीकार करता है तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह दूसरे पक्ष के सामने झुक रहा है? यदि वह वास्तव में ऐसा करता है तो यह उसके लिए एक मानसिक राक्षस बन जाएगा और अनिवार्य रूप से उसकी आध्यात्मिक साधना को प्रभावित करेगा। यह आदमी सचमुच जानता है कि लोगों की देखभाल कैसे की जाती है। हुआ मिंगिंग ने पलकें झपकाई, उसकी आंखें फैंग चेन से भर गईं और अनायास ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझे हवा और बारिश से बचा लेता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैं उसे इतना पसंद करता हूँ। यूनतियान पवित्र पुत्र, यदि तुम्हारे पास क्षमता है तो हमें मार डालो। यंग तियानई जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। उनसे माफी मांगना और अपनी गलती स्वीकार करवाना बिल्कुल असंभव है। भले ही वे मारे जाएं, वे कभी भी माफी नहीं मांगेंगे या अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, और वे कभी भी फैंग चेन के सामने झुकेंगे नहीं, क्योंकि यह सिर्फ माफी मांगने की बात नहीं है, यह उनके महान ईगल कबीले का चेहरा दर्शाता है। अगर वह माफी मांग ले और अपनी गलती मान ले तो विशाल चील वंश की प्रतिष्ठा का क्या होगा? लोग कहेंगे कि विशाल चील वंश बादलों के स्वर्ग की पवित्र भूमि से कहीं कमतर है। यदि वह विशालकाय ईगल कबीले में वापस लौटता है तो उसे भी दंडित किया जाएगा। शायद जब सर्प वंश का पवित्र पुत्र वापस आएगा तो दूसरे पक्ष की उच्च स्थिति के कारण सजा बहुत कम गंभीर हो सकती है, लेकिन यंग तियाने के लिए यह अलग है। यदि वे सबके सामने फोंग चेन के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं तो लौटने पर वे गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे या मारे जाएंगे। इसलिए यंग तियानई फोंग चेन के सामने समर्पण करने के बजाय मरना पसंद करेगी। देखा, वे समर्पण करने की बजाय मरना पसंद करेंगे। फैंग चेन ने हान शांगसी को देखा, कंधे उचकाए और कहा, ऐसा नहीं है कि मैं आपके दिव्य पत्थर मंडप को सम्मान नहीं देता, बल्कि यह है कि वे आपको सम्मान नहीं देते। हान शांगसी ने गहरी सांस ली और मुस्कुराया, महाराज, युनतियान के पवित्र पुत्र, कृपया अपने आप को घर पर महसूस करें। यदि वह इसी रास्ते पर चलते रहेंगे तो किसी भी पक्ष को खुश नहीं कर पाएंगे। वह ये भी देख सकते थे कि कोई भी पक्ष पीछे हटने का इरादा नहीं रखता। भले ही सर्प वंश का पवित्र पुत्र रियायतें दे दे, क्या फैंग चेन वास्तव में उसे जाने देगा? प्राचीन सर्प जाति की रीति रिवाजों के अनुसार वे दिव्य पाषाण मंडप को धन्यवाद नहीं देते थे, इसके विपरीत वे उनसे नाराज होते थे। ऐसा करने के बजाय बेहतर होगा कि फैंग चेन को सम्मान दिया जाए, कम से कम किसी भी पक्ष को नाराज न किया जाए। इसके अलावा फोंग चेन की स्थिति इन दोनों लोगों की तुलना में बहुत अधिक है। लाखों वर्षों से युनतियान पवित्र भूमि की प्रतिष्ठा बिना कारण नहीं है। आसपास के लोगों ने स्वाभाविक रूप से हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि इन तीनों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, और वे तमाशा देखकर खुश थे। यंग तियानई और सर्प वंश के पवित्र पुत्र के जीवन या मृत्यु से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा अगर वे आगे बढ़ते तो मुसीबत मोल ले लेते। वहां मौजूद लोग न तो मूर्ख थे न ही नेक लोग, वे स्वाभाविक रूप से एक तरफ खड़े होकर तमाशा देखने में खुश थे। क्या आपका भी यही रवैया है? फैंग चेन ने सर्प वंश के पवित्र पुत्र को एक बड़ी मुस्कान के साथ देखा, मानो वह किसी ऐसे दोस्त से मिल रहा हो जिसे उसने कई वर्षों से नहीं देखा था। बिल्कुल, सर्प वंश का पवित्र पुत्र बिना किसी हिचकिचाहट के बोला। यंग तियानई जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, मौत के सामने भी झुकने को तैयार नहीं। अगर वह सांपों के कबीले के आगे झुक जाता तो उसके पास कहने लायक कोई चेहरा नहीं बचता। यद्यपि परमेश्वर के पुत्र का पद ऊंचा और शक्तिशाली है, फिर भी उसके साथ उतनी ही भारी जिम्मेदारियां भी जुड़ी हैं। क्योंकि वे राक्षस और सर्प जातियों की गरिमा का प्रतिनिधित्व करते हैं, लोग मर सकते हैं लेकिन गरिमा नहीं खोनी चाहिए। यदि वह काय है और मृत्यु से डरता है तो वह सर्प कुल का पवित्र पुत्र होने के योग्य नहीं है। अब फैंग चेन के अधीन होकर सर्प कुल में वापस लौटना उसके लिए बहुत परेशानी लेकर आएगा और वह पवित्र पुत्र के रूप में अपना स्थान भी नहीं बचा पाएगा। फैंग चेन, हमारे पीछे दो प्राचीन राक्षस कुल हैं। सर्प वंश का पवित्र पुत्र भी चिंतित था कि फैंग चेन सब कुछ नजरअंदाज कर देगा और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें मार देगा, इसलिए उसने उसे एक विशेष अनुस्मारक दिया। ये भी एक धमकी है। चूंकि वे फोंग चेन के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वे फोंग चेन को दबाने की आशा में अपने पीछे की ताकतों को सामने लाएंगे। अरे, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? फोंग चेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। सर्प वंश के पवित्र पुत्र ने घुराघुराहट की लेकिन चुप रहा। शायद आप यह नहीं जानते होंगे, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होती वह है दूसरों द्वारा दी जाने वाली धमकी। फैंग चेन ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, आपको मुझे डराने के लिए प्राचीन राक्षस जाति का उपयोग करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जब युवा पीढ़ी लड़ती है तो वे अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। भले ही तुम्हारे पीछे की प्राचीन राक्षस जाति मुझसे बदला लेना चाहती हो, वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यही नियम है। कोई भी बल इस नियम को आसानी से नहीं तोड़ सकता। आपको उन्हें नियमों की अवहेलना करने के लिए बाध्य करने का अधिकार तो है ही। फैंग चेन कोई भोला भाला युवक नहीं था। वह सर्प वंश के पवित्र पुत्र के शब्दों से कैसे भयभीत हो सकता था? जब तक पुरानी पीढ़ी कार्रवाई नहीं करती और युवा पीढ़ी आपस में लड़ती नहीं है, तब तक जीवन और मृत्यु भाग्य पर छोड़ दी जाती है और पर्दे के पीछे की ताकतें हस्तक्षेप नहीं करेंगी। कम से कम ऊपरी तौर पर तो यही है। ये ताकतें सिर्फ पर्दे के पीछे से ही काम कर सकती हैं और इन्हें पकड़ा नहीं जा सकता। एक बार इनका पता चल गया तो दोनों बड़ी ताकतों के बीच युद्ध छिड़ जाएगा।